जाता है गोवर्धन पूजा के ऊपर। वैसे तो संसार ने कल गोवर्धन पूजा बनाया, लेकिन वैष्णव विधि से हम आज बना रहे हैं गोवर्धन पूजा को। तो गोवर्धन जो है बहुत ही विशेष है, तो हम सब गोवर्धन जी महाराज के लिए कुछ मंत्र उच्चारण करेंगे, जिससे हम उन अपने हृदय को शुद्ध करें, क्योंकि गोवर्धन भगवान भी हैं और भगवान के भक्त भी हैं। हरिर्दास वर्यम भी हैं, दासों में सर्वश्रेष्ठ दास भी हैं और साथ में भगवान स्वयं भी हैं। तो सब साथ में एक बार बोलने का प्रयास करेंगे। नमस्ते गिरिराजाय,
नमस्ते गिरिराजाय,
श्री गोवर्धन नामिने, अंश शेष कलेश नाशाय, परमानंद दाहिने। इसका अर्थ है, मैं समस्त पर्वतों के राजा गोवर्धन पर्वत को सादर नमन करता हूँ। वे असीमित दुख व कष्टों को अंत कर देते हैं और परम आनंद प्रदान करते हैं। गोवर्धनो जयति शैलाकुलाधिराजो योगोपिका विरुदितो हरिदास वर्यम्। कृष्णेन शङ्खमकभ्रङ्गकान्तिरचितोऽयं सप्तामस्य करपदतले आव्यापवासितः सप्तमेवाच्युता हस्ता पङ्कजे भ्रङ्गायमानं फलमूलकन्दरे सेव्यमानं हरिमात्मवृन्दके गोवर्धनम् अदरि शिरसा नमामि। पर्वतों के वंश में महान राजा श्री गोवर्धन तेजस्वी व यशस्वी हैं, जिनकी गोपियों ने कृष्ण के श्रेष्ठ सेवक के रूप में प्रशंसा की, जो कृष्ण के कर कमलों में 7 दिन तक विश्राम करते रहे और जिनको कृष्ण ने इंद्र का यज्ञ भंग करके आराधना के योग्य बनाया। मैं गोवर्धन पर्वत को दंडवत प्रणाम करता हूँ, जिन्हें अच्युत भगवान कृष्ण के कर कमलों में 7 दिनों तक रखा गया था और जिन्होंने अपने स्वयं के समान से भंवरों के झुंड से तथा प्रचुर मात्रा में स्वादिष्ट फलों से भगवान कृष्ण की सेवा की। तो कृष्ण की सेवा भी करी है और स्वयं कृष्ण भी हैं। तो ऐसे गोवर्धन भगवान के बारे में वर्णन करते हैं कि जो ये गोवर्धन है, ये श्री वृंदावन धाम बहुत ही विशेष धाम, आप सभी जाते हैं वृंदावन धाम में। तो आज भी प्राचीन काल से भगवान श्री कृष्ण के समय से आज भी 3 चीजें विराजमान हैं, जिन्हें आप साक्षात प्राचीन संग कर सकते हैं। एक तो है गिरिराज गोवर्धन, दूसरा यमुना जल और तीसरा व्रज रज। व्रज की जो रज है, जो मिट्टी है, और जो वहां पर यमुना जल है, और वहां पर जो श्री गोवर्धन, ये 3 चीजें आज भी प्राचीन विराजमान है। और कहते हैं भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र थे जिनका नाम था व्रजनाभ। व्रजनाभ जी ने कई ऐसे डेटीज इंस्टॉलेशन किया जो कि आज भी विराजमान है। जैसे आप जाए गरुण गोविंद मंदिर में 5000 वर्ष पुरानी प्राचीन विग्रह है, और आप गोवर्धन पर जाएं अगर तो प्राचीन विग्रह मिलेंगे आपको। हरिदेव जी का विग्रह मानसी गंगा के पास में ही है, बिल्कुल बहुत सुंदर विग्रह है हरिदेव जी का, और वो वही स्थान है जहां से भगवान श्री कृष्ण गिरिराज गोवर्धन को उठाया था, वो स्थान है। अभी अधिक लोगों को उसके बारे में मालूम नहीं है। तो ये जो वृंदावन धाम है, इसके बारे में कहते हैं कि ये व्रज मंडल 84 कोस में फैला है, और 84 कोस का मतलब 1 कोस में 3 किलोमीटर, तो 252 किलोमीटर का ये जो है ना पूरा परिक्रमा है, चक्र जो है व्रज कोस बोलते हैं। तो व्रज शब्द का अर्थ बताते हैं, व्रज मतलब है जो सर्वव्यापक है। लोग बोलते हैं व्रज का क्या अर्थ है, व्रज मंडल परिक्रमा, व्रज बोलते हैं। एक तो है कि ये भगवान श्री कृष्ण के प्रपौत्र, मतलब भगवान के पुत्र प्रद्युम्न, प्रद्युम्न के पुत्र अनिरुद्ध, अनिरुद्ध के पुत्र वज्रनाभ, और वज्रनाभ जो थे वो पांडवों के जो पुत्र है परीक्षित, उनके संगी हैं। पांडवों के पुत्र अभिमन्यु, अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित। तो परीक्षित ने कहा मैं हस्तिनापुर में रहकर के आपकी देखरेख करूंगा, सुरक्षा प्रदान करूंगा। हे वज्रनाभ जी, क्योंकि आप साक्षात कृष्ण परंपरा में हैं, आप ही व्रजमंडल की स्थापना करिए। तो 5000 वर्ष पूर्व व्रजमंडल की स्थापना करी, तो उनके नाम से भी व्रज आता है। परंतु व्रज शब्द शास्त्र की दृष्टि से देखें तो व्रज का मतलब है व्यापक, जहां पर सर्वत्र विचरण करने वाली गाय, जो हमेशा फैलता रहता है। तो इसको शास्त्र में कहते हैं ब्रजति गच्छति इति ब्रजा, जो ब्रजति गच्छति इति ब्रजा, जो चलता फिरता है। तो कई बार लोग ऐसा प्रश्न पूछते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है भगवान रहते हैं नंदगांव में, टेर कदम के पास आपने देखा स्थान नंदीश्वर पर्वत पे, रासलीला करने जाते हैं वृंदावन, आप लोग जाते हैं वृंदावन नंदगांव से तो बस में बैठकर जाते हैं, कितनी देर लगती है? आधा घंटा एक घंटा ट्रैफिक में लगता है। भगवान जाते हैं लीला करने के लिए 5 वर्ष की आयु में वृंदावन, और वृंदावन में जैसे गोचारण लीला समाप्त होती है गोधूली विला में 4 बजे 4:30 बजे चलना प्रारंभ करते हैं और तुरंत पहुंच जाते हैं अंधेरा होने से पहले, जाने में लगते हैं 2-3 घंटे पैदल पैदल, हम तो बस से जा रहे तब आधा घंटा, पैदल जाने में 3-4 घंटे, वापिस आ रहे हैं तो कैसे? तो इस शास्त्र में आचार्यों ने विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर आदि वर्णन करते हैं, व्रजति गच्छति इति व्रजः, व्रज वो है जो चलता फिरता है, मतलब कह सकते हैं ये कि एक कमल का जैसे एक फूल है जब वो सुबह के समय खिल जाता है तो भगवान चलकर जाते हैं और वृंदावन में लीला स्थापना करते हैं, और जब ब्रज चलता है शाम को भगवान का मन होता है मैं वापस नंदगांव जाऊं तो कमल का फूल जैसे ऐसे बंद हो जाता है, तो ये बरसाना और नंदगांव से पास पास आ गए बंद हो जाता, तो व्रजति गच्छति इति व्रज, गच्छति मतलब चलता फिरता है, व्रज को मालूम नहीं पड़ेगा आपको व्रज कैसे चल रहा है कैसे विस्तार कर रहा है, तो ये सब कुछ चलायमान है। यहाँ पर व्रज के अंदर जो देवी देवता थे उन सब ने कहा प्रभु आप जा रहे हैं व्रज मंडल के अंदर अपनी सेवा कर अपनी लीला करने के लिए तो हमें भी लेके चलिए। ब्रह्मा जी ने ब्रह्माचल पर्वत ले लिया, 4 मुख लेकर के बैठ गए ब्रह्मा जी, मानगढ़ विलासगढ़ दानगढ़ भानुगढ़, ये 4 मुख हैं ब्रह्मा जी के जो बरसाना के 4 पहाड़ है, भगवान ब्रह्मा जी बैठे हुए ब्रह्माचल पर्वत बन के, कह रहे हे श्रीमती राधा रानी आप मेरे मस्तक पर लीला करिए, तो शिव जी बोले हम क्यों पीछे रहे, तो शिव जी भी आ गए नंदीश्वर पर्वत बनकर के नंदगांव में, बोले कृष्ण हमारे मस्तक पे लीला करेंगे, तो शिव जी बैठे हैं नंदीश्वर पर्वत में, तो एक हो गए शिव जी एक हो गए ब्रह्मा जी, तो विष्णु भगवान जो कि पालनहार है कृष्ण के साक्षात विग्रह है, तो विष्णु जी बोले हम क्या बने, तो विष्णु जी क्या बन जाते हैं गिरिराज गोवर्धन बन जाते हैं, गोवर्धन महाराज की। तो गोवर्धन के प्राकट्य के कई प्रकार है, कहते हैं सर्वोपरि श्री गोकुल व्रज लोक धाम श्री गोलोक श्वेत दीपा वृंदावन नाम तीन लोके कृष्ण केवल लीला मये निज गण लया खेला अनंत समय, निज गण लीला अपने निज पार्षदों को लेकर के कहते चलो सारे, तो सब ग्वाल बाल सखा बन गए, सारे देवता तो ये बन गए ब्रह्मा जी शिव जी भगवान आ गए नीचे, अभी खाली बोल रहे हैं देवता जो 33 करोड़ है इंद्र वरुण गरुण अरुण चंद्र सूर्य सब बोले प्रभु हमारे अभी तो कुछ लीला में सहयोग होना चाहिए, भगवान बोले नहीं आप बैठकर देखो बस यही आपका काम तो बोले नहीं कुछ तो सेवा में लगाइए, भगवान बोले देखो वैकेंसी ऑक्यूपाइड सारा बंद हो चुका है ना क्लोज हो चुका है, अभी कोई जॉब वैकेंसी है नहीं किसी के लिए, लीला में कोई जगह नहीं स्पेस नहीं है, कहा प्रभु कुछ तो जगह होगी, भगवान बोले आप ही देखिए, तो जाकर के देखे श्री गोलोक श्वेत दीप वृंदावन नाम, इसके नाम 3 प्रकार से बोले जाते हैं, वृंदावन को शास्त्रों में गोकुल को गोलोक भी कहा गया, गोकुल धाम गोलोक भी है, श्री भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं ये जो गोकुल है जहां पर भगवान कृष्ण आते हैं ये गोकुल का वो प्रकाश है गोलोक धाम, जहां जाने की लोग बात करते हैं वो गोलोक धाम इस गोकुल का प्रकाश है, ऐसा बोलते हैं भक्ति विनोद ठाकुर अपने भाष्य में। सोचिए कितना बड़ी चीज है जो कि हमारे नजदीक दिल्ली के पास है, हम सोचते हैं अरे वृंदावन ही तो जा रहे हैं वहां पर, नए नए लोगों को लेके जाते हैं, वृंदावन में प्रवेश करने के लिए बहुत ही शक्तिशाली दृष्टि चाहिए जिससे हम विचरण कर सके, इसलिए वृंदावन में जाते हैं तो बोलते हैं बंदरों ने चश्मा उतार लिया, उतारते कि नहीं आपका उतारा कभी किसी का किस किस का उतारा प्रभु जी, पता क्यों उतारते हैं वहां बंदर भी जानते हैं व्रज धाम में मोरा अभिलास विलास कुंजे दियो आस, बहुत सारे भक्त गा रहे हैं लेकिन साथ में अपराध भी कर रहे हैं, तो भगवान विलास कुंज में वास तो देते हैं पर बंदर के रूप में देते हैं, तब बंदर के रूप में विलास मिल जाता है तो जानते हैं अपराध हो जाता है इसीलिए हम बंदर बने, तो कहते हैं ये चश्मा उतारो भक्ति का चश्मा लगाओ तब वृंदावन धाम दिखेगा, वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम, तो वृंदावन चिंतामणि धाम है, लेकिन हम लोग कैसे हम लोग चिंतामणि को 2 भाग में बांट देते हैं, चिंता करते रहते हैं किसकी मणि की तो वृंदावन जाकर के भी व्यापार आदि चिंता लोग सोचते अरे प्रभु जी काश एक गेस्ट हाउस बना लू ना बड़ा यहाँ पर कार्तिक में तो बहुत धन आएगा है, वृंदावन में देखो एक फ्लैट ले लेता हूँ होमेक्स वालों के सस्ते फ्लैट है, चिंता और मनी, ये दोनों चिंता अबाउट मनी चिंता मणि है, ऐसा नहीं है। व्रजधाम विद दिव्य चिंता मणि धाम है, जो चिंतन करेंगे वो प्राप्त हो जाएगा, और ऐसा कई बार अनुभव भी किया। तो जो ये वृंदावन धाम है इतना इतना ज्यादा भगवान का निज धाम है, निज गण लया कृष्ण खेले अनंत समय, अनंत लीलाएं करी भगवान ने वृंदावन में, तो वृंदावन चलता है फिरता है। ऐसा नहीं कि वृंदावन समाप्त हो जाएगा प्रलय काल में, जब सारे ब्रह्मांड समाप्त होता है एक ही समय तीनों गुण लय हो जाते हैं तो वृंदावन भी समाप्त हो जाएगा, वृंदावन कभी समाप्त नहीं होता। भगवान ने एक बार एक प्रतिस्पर्धा करी, कॉम्पिटिशन, बोले सभी तीर्थों को बुलाओ, सभी तीर्थ आए 33 करोड़ तीर्थ आए, आप जाइए रामेश्वरम में 22 तीर्थ में स्नान कराते हैं जल से, 33 करोड़ तीर्थ आ गए, सबको कंपटीशन हुआ बेस्ट कौन बेस्ट कौन बेस्ट कौन, तो पता चला कुछ गंगा किनारे के तीर्थ है, कुछ यमुना किनारे के हैं, कुछ गोदावरी के हैं, कुछ सरस्वती के हैं, लेकिन एक तीर्थ है जहां 3 नदियां मिलती हैं, गंगा यमुना सरस्वती प्रयाग, उनको राजा बना दिया, बोले आप राजा हैं। वृंदावन को लगा लीला हमारे यहाँ करी, प्रकट हमारे यहाँ हुए, चलते फिरते हमारे यहाँ, रास हमारे यहाँ उठाते, गोवर्धन हमारे यहाँ, और राजा बना दिया इसको। तो भगवान के पास आके ना वृंदावन उदास हो गया, बोला प्रभु आपने तीर्थराज प्रयाग इलाहाबाद को बना दिया राजा, हम तो रह गए वृंदावन धाम। तो भगवान कहते हैं वहां पर, श्री भगवान उवाच धारयम् सर्व तीर्थानाम् त्वम् कृतस्तीर्थरणामयाम् किन्तु स्वस्य गृहस्यामि नाकृतो राट त्वमेव हि राट स्वराट। हे प्रयागराज तीर्थ तुम स्वराट हो, सभी तीर्थों में हो, लेकिन हे वृंदावन धाम तुम दुखी मत हो, किंतु स्वयं गृहस्यामि मैं अपने घर को क्या उसमें लगा दूं कंपटीशन में मेरा घर तो अलग है, ये सारे तो तीर्थ हैं, ये तो मेरा घर है, निज धाम, निज गण लया खेले अनंत समय, ऐसा स्थान है वृंदावन धाम, ये प्रतिस्पर्धा में नहीं जाता है। मान लीजिए अगर इस्कॉन वाले भक्त मिलकर के कोई कंपटीशन करें, ड्रेस कंपटीशन, फैंसी ड्रेस या कोई भी श्रवण कीर्तन कॉम्पिटिशन, तो उसमें जो ऑर्गेनाइजिंग अथॉरिटी है वो अपने बच्चों को प्राइज देने लगे या वो ब्रह्मचारी प्राइज लेने लग जाए, तो फिर तो बाकी लोग कहेंगे ना क्या आपने कंपटीशन में अपना तो कोई भी ले लेगा। तो भगवान ने कहा नहीं, तुम कंपटीशन में नहीं हो, क्यों, किंतु स्वमस्य घरस्यामि तुम मेरा खुद का घर हो, तो यहां तो मैं प्रतिस्पर्धा करता हूं लेकिन यहां तो मैं सदा विराजमान रहता हूं। तो वृंदावन जाए ना तो भगवान का दर्शन करने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि भगवान कभी वृंदावन त्याग कर गए नहीं। तो ऐसे वृंदावन में एक बार आप जाने कि जो जो गोवर्धन है, बहुत सारी कथाएं वैसे तो, यमुना जी का प्राकट्य कैसे हुआ, व्रज रज का प्राकट्य कैसे हुआ और गोवर्धन का प्राकट्य कैसे हुआ। तो यमुना का प्राकट्य तो आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण की पटरानियों में से एक है कालिंदी, तो कालिंदी जल रूप में बहती हैं, लेकिन साथ ही साथ में जो ये व्रज रज है, जो 33 करोड़ देवता थे, बोले प्रभु हमारे को कौन सा स्थान मिलेगा। तो उन्होंने देखा व्रज में सब कुछ समाप्त हुआ लेकिन एक स्थान रह गया है, कौन सा, व्रज की रज। तो 33 करोड़ देवता बोले प्रभु हम पर कृपा करें, हमें रज ही बना दे। भगवान बोले तथास्तु, ठीक है आप कर लीजिए, रज बन जाइए। तो व्रज की रज में भगवान ने कभी चरण पादुका पहनी नहीं, क्यों नहीं पहनी है, इसीलिए नहीं पहनी है कि यहां पर कौन है, मेरे चरण चिन्हों को अपने मस्तक पर धारण करने के लिए 33 करोड़ देवता इस व्रज की रज में विराजमान। सोचिए तो हम वहां पर चप्पल पहनकर जाए, जूता पहन करके जाए, तो आप सोच के देखिए हम देवताओं के सिर पे पांव रख करके जा रहे हैं, ये व्रज रज है। इसलिए लोग आज भी ब्रह्मांड घाट जाएं तो वहां पर व्रज के लड्डू बना करके भक्त खाते हैं, कारण यही है। भगवान ने भी इसको ग्रहण किया, क्यों किया, कहते हैं मुक्ति पूछे गोपाल सो, मुक्ति भी गोपाल से पूछती है व्रज में, मुक्ति पूछे गोपाल सो मेरी मुक्ति कहाँ, मेरी मुक्ति कहाँ है, मैं तो मुक्ति हूँ व्रज में आई हूँ पर मेरी मुक्ति कहाँ, मैं तो सबको मुक्ति दे रही हूँ। मुक्ति पूछे गोपाल सो मेरी मुक्ति कहाँ, गोपाल कहे व्रज रज उड़ मस्तक लगे मुक्ति मुक्त है जा, तुम्हारी मुक्ति कैसे है, व्रजरज उड़कर तुम्हारे मस्तक पे लग जाएगी, तुम भी मुक्ति मुक्त हो जाओगे, ये व्रजरज की महिमा। व्रज में जाएं दंडवत प्रणाम करें तो कभी भी झाड़ना नहीं चाहिए व्रजरज को, मतलब हमने देवताओं का अनादर कर दिया, उतरो चलो हमारे कपड़ों से हटो साइड में, व्रजरज की बहुत महिमा है। इसीलिए भगवान ने भी ब्रह्मांड घाट में व्रजरज को पालन किया, इसलिए नहीं किया कि भगवान अपना विराट रूप दिखाना चाहते थे, विश्व स्वरूप अपने मुख के अंदर। भगवान ने क्यों किया, भगवान के शरीर में 33 करोड़ तीर्थ धाम वास करते हैं, अनंत ब्रह्मांड वास करते हैं, रोम कुप से बुलबुले के समान ब्रह्मांड निकल रहे हैं। तो सभी ब्रह्मांड व्रज रज में लगकर मुक्त हो रहे थे, लेकिन कुछ ब्रह्मांड भगवान के उदर में भी थे, उधर में भी थे। तो उधर भाग के जो ब्रह्मांड थे वो अंदर से पुकार रहे थे, हे गोविंद, हे कृष्ण, क्या हमारी मुक्ति नहीं इस ब्रज रज में? जब इस प्रकार से उन्होंने पुकारा तो भगवान बोले, हाँ हाँ चिंता मत करो, कुछ ही समय में मैं क्या करूंगा, ब्रह्मांड घाट पर मिट्टी खाने की लीला करूंगा, वो व्रज रज उजाकर डालूंगा, उसके स्पर्श मात्र ब्रह्मांड तुम लोग जो उधर ब्रह्मांड है मुक्त हो जाओगे। ये सोचो, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तो व्रज रज की एक बूंद मुंह में चली जाए तो व्यक्ति मुक्त पा लेता है, लेकिन कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए साधु संग और भजन करना पड़ेगा। तो हम लोग भजन करने, पाप क्षय करने के लिए नहीं आए। व्रज रज में जाकर पाप क्षय हो गया, जगन्नाथ जी को दंडवत किया पाप क्षय हो गया, हरे कृष्ण एक बार बोला पाप क्षय हो गया, तो निरंतर जाप क्यों कर रहे हैं? क्यों कर रहे हैं? कृष्ण प्रेम प्राप्त करने के लिए। निरंतर करो तुलसी सेवन, लो कृष्ण नाम, निरंतर तुलसी सेवन करो, कृष्ण का नाम लो, अचिराते पावे पदे प्रभु प्रेम धाम, भगवान का प्रेम प्राप्त होगा अगर निरंतर क्या बोलेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो गर्ग संहिता के अंदर आता है, नारद जी ने भलश्वास ऋषि से पूछा कि हे भलश्व ऋषि आप ये बताइए, तो भलवाश ऋषि पूछ रहे नारद जी से, आप ये बताइए कि गिरि गोवर्धन भगवान के धाम में कैसे प्रकट हुए, उनका कोई स्वरूप होगा, जब आए संसार में सब कुछ भगवान के धाम से आया तो वहां उनका क्या स्वरूप है? तो भलवाश ऋषि को नारद जी गर्ग संहिता में वर्णन करते हैं कि जो भगवान गोलोक धाम सहस्त्र कमल पद के बीच में, जो बीच में होता है ना कर्ण का, वहां विराजमान श्री राधा कृष्ण बैठे थे, तो राधा भी नहीं थी, कृष्ण थे। तो आप जानते हैं कृष्ण के वांग भाग से, लेफ्ट साइड से उनकी ही आनंद शक्ति प्रकट हुई, भगवान को आनंद करने विलास करने का जब मन हुआ आनंद शक्ति प्रकट हुई और वो दौड़ने लगी, धावा करने लगी उस रास मंडल के अंदर जहां भगवान रहते हैं, माधुर रस का प्रकाष्ठा। तो जब भाग रही थी तो वो वहां से पुष्प चुन के लाई और उनको बड़ी आनंद हो रहा है क्योंकि आनंद मूर्ति है श्रीमती राधा रानी कृष्ण की सेवा करने की। रास मंडल में धावा किया तो रास मंडल का रा और धावा का धा, धावा मतलब भाग है ना, रास मंडल का रा और धावा का धा तो कृष्ण के मुख से निकला, ओ रा धा, राधा रानी प्रकट हुई। तो राधा रानी प्रकट हुई, भगवान के वांग भांग में आकर के बैठ गई, राधा और कृष्ण दोनों बैठे हैं, तो राधा रानी के साथ नित्य लीला विहार कर रहे थे भगवान, आनंद का अनुभव। तो यहां पर नारद जी कहते हैं एक दिन श्रीमती राधा रानी ने पूछा, कृष्ण आपने आनंद को अनुभव करने के लिए मुझे प्रकट किया, परंतु क्या आप मुझसे प्रेम करते हैं? अभी अपनी आनंद शक्ति से तो सभी प्रेम करते हैं, शक्ति शक्तिमान भिन्न नहीं है। तो बोले, प्रभु आप क्या मुझसे प्रेम करते हैं? भगवान बोले, ये कोई पूछने की बात है, मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूं। बोले, अच्छा कितना प्रेम करते हैं ये बताइए। तो यहां पर कहते हैं राधा रानी ने कहा, राधा रानी वर्णन करते हुए बताती हैं, वृंदावने दिव्या निकुंज पार्श्वे कृष्ण तटे रास रसाय योगम रहस्थलम त्वाम कुरुतोन्मनोगयाम मनोरथोयम माम देव देवा। राधा रानी कहती हैं कि हे प्रभु, वृंदावन दिव्य निकुंज पार्श्वे, ये जो वृंदावन है गोलोक वृंदावन, कृष्ण तटे रास रसाय योगम, हम तो यहां रास का आनंद लेने के लिए आपने मुझे प्रकट किया है, रहस्य त्वम, आप मुझे इस रहस्य को उजागर करिए, मनोरथम, मेरा एक मनोरथ है, आप मुझसे कितना प्रेम करते हैं, मम देव देवा, मेरे देव आप मुझे वर्णन करिए, मम देव देवा बार बार बोल रही हैं। तो कृष्ण कहते हैं, ये कहने की बात नहीं है कितना प्रेम करते हैं, ये देखो मेरा प्रेम तुम्हें प्रकाशित करके दिखाता हूं। भगवान श्री कृष्ण के हृदय भाग से एक तिलक जैसा एक रोशनी, बहुत सजल तेज प्रेम प्रकाश प्रकट हुआ और प्रकट होकर के एक तिल के रूप में आकर के गिरा। राधा ने कहते, लगता है कोई पुष्प गिरा है। भगवान कहते हैं, ये पुष्प नहीं है, ये मेरा प्रेम है। अच्छा, जो मैं आपके प्रति करता हूं, और प्रेम कैसा था? वर्धन करने लगा, देखते देखते ही 1,00,000 योजन ऊंचा हो गया वो तिल। 1,00,000 योजन होते होते 100 करोड़ योजन हो गया, 100 करोड़ योजन उसकी लंबाई हो गई और 50 करोड़ योजन उसकी चौड़ाई हो गई। और पूरा गोलोक वृंदावन धाम सोचो कितना बड़ा होगा, 1 योजन में 3 किलोमीटर होते हैं, इतना बड़ा हो गया वो पर्वत। तो राधा रानी कहती बस बस कृष्ण मैं समझ गई आपका प्रेम कितना है, अब इसका वर्धन करना रोकिए, इसका वर्धन करना रोकिए, क्योंकि ये आप ही की गौ मतलब इंद्रियां, आप ही की इंद्रियों का वर्धन प्रेम रूप प्रकट हुआ है, इसलिए गौ वर्धन जो बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है बढ़ता जा रहा है, आपका प्रेम बढ़ता जा रहा है, इसलिए गौ वर्धन, इसलिए इनका नाम क्या हो गया गोवर्धन। वही रोक दिया, 100 योजन लंबे और 50 योजन चौड़े, ये गोलोक धाम में प्रकट हुए गर्ग संहिता के अनुसार श्री नारद जी ने बलवा श्रेष्ठी को बताया। तो यही बात फिर बाद में प्राचीन काल में नंद महाराज जो थे उन्होंने भी अपने भाई बड़े भाई सनंद से पूछा, हे सनंद ये बताइए कि ये गिरिराज वृंदावन में कैसे प्रकट हुआ। तो नंद महाराज को सनंद बता रहे हैं और यहां पर बता रहे हैं पृथ्वी पे कैसे प्रकट हुआ। जब ये वहां प्रकट हो गया और भगवान के बारे में वर्णन हुआ कि भगवान अभी अपनी पृथ्वी धरातल की भूम लीलाएं भौम वृंदावन लीलाएं करने जा रहे हैं, तो राधा रानी ने कहा प्रभु आपने सभी अपने अनुचर ले लिए, सभी भक्त ले लिए, साथ में सबको लेकर के जा रहे हैं, लेकिन एक बात मैं आपको कहूं। तो आता है श्री राधा उवाच, राधा रानी कह रही हैं, यत्र वृंदावनम नास्ति न यत्र यमुना नदी, यत्र गोवर्धन नास्ति तत्र मे नामन सुखम। ये किसने कहा, राधा रानी ने कहा ये 3 चीजें नहीं है तो मेरे मन को सुख नहीं मिलेगा। यत्र वृंदावनम नास्ति जहां वृंदावन धाम ना हो, यत्र यमुना नदी न यत्र यमुना नदी जहां यमुना नदी ना हो, यत्र गोवर्धन नास्ति जहां गोवर्धन ना हो, तत्र मे नाम न सुखम, मेरे मन को सुख नहीं मिलेगा प्रभु। भगवान ने कहा अच्छा इसी बात है, ये लो। भगवान ने खड़े खड़े अपने गोलोक धाम के ऊपर ऐसे एड़ी से चोट मारी, चोट मारी तो 84 कोश वसमंडल प्रकट हो गया, गोलोक धाम का हिस्सा आके नीचे गिर गया। मतलब कोई मान लीजिए बहुत बड़ा 9 लाख का हार पहन के जा रहा है डायमंड का, और उसके में एक एक डायमंड जो है वो लाखों रुपए का है, और चलते चलते वो एक डायमंड एक हीरा भूमि पे गिर जाए तो क्या हम उसे भूमि भाग कहेंगे, मिट्टी कहेंगे, क्या कहेंगे, हीरा ही कहेंगे। ऐसा तो नहीं मिट्टी में गिरा तो मिट्टी हो गया। तो ऐसे ही गोलोक धाम में जब चोट मारी तो वो 84 कोस नीचे आके गिरे तो वो गोलोक धाम ही है। तो कभी आप वृंदावन जाए तो ये मत सोचिए मैं उत्तर प्रदेश जा रहा हूं, क्योंकि जो उत्तर प्रदेश जा रहा है उसके लिए जमीन है, उसके लिए जमीन है, लेकिन जो भक्त है वो व्रजमंडल मथुरा महात्मा के अंदर वर्णन है कि ये जो व्रजमंडल है ये 2.5 इंच जमीन से ऊंचा रहता है, 2.5 इंच इतना ऊंचा रहता है और वो दिव्य धाम दिखता नहीं है। कोनो कोनो भाग्यवान देखी बारे पाए, कौन भाग्यशाली होगा जो देख लेगा कि व्रज मंडल ये है दिव्य धाम। हमको क्या दिखेगा, इसके नीचे वाला उत्तर प्रदेश, टूटी सड़कें, सुअर घूम रहे हैं, प्रॉपर्टी का काम हो रहा है, व्रजवासी देखो बीड़ी पी रहा है, देखो क्या चपान खा रहा है, कैसा बिहेव कर रहा है, ये नीचे वाला धाम दिख रहा है। इसके ऊपर है क्योंकि ये मिट्टी थी भूमि, इस पे आके गिरा ये व्रजमंडल, तो इतना ऊंचा जमीन को टच करेगा नहीं, भगवान के धाम है ऐसे रहता है हवा में, जैसे अर्जुन का रथ रहता था, युधिष्ठिर का रथ रहता था हवा में, है ना। एक बार अर्जुन युधिष्ठिर ने खाली इतना बोल दिया था नरोवा कुंजरोवा तो जमीन में लग गया था उनका रथ, तो वो घबरा गए थे मेरा रथ जमीन में कैसे आया। तो सत्य का प्रतीक है सत्यम परम धीमहि वृंदावन धाम, हवा में रहता है इतना ऊंचा, नहीं दिखेगा नहीं हमको, हमें तो वही दिखेगा क्योंकि दृष्टि ऐसी है, इसीलिए बंदर चश्मा उतारते हैं, दृष्टि बदलो, दृष्टि बदल करके वृंदावन धाम में प्रवेश करो। तो इस प्रकार से भगवान कृष्ण का अच्छा ठीक है लो वृंदावन आ गया, यत्र वृंदावन नास्ति वृंदावन आस्ति, वृंदावन आ गया और क्या चाहिए, यहां यत्र यमुना नदी तो यमुना को भेज दिया, कालिंदी पटरानी को जाओ आप, और क्या चाहिए, यत्र गोवर्धन नास्ति तो गिरिराज गोवर्धन की सेवा लगाई, चलो गोवर्धन पृथ्वी में प्रकट हो जाओ। तो जब पृथ्वी में प्रकट हुए तो शामली द्वीप नाम का एक स्थान था, शामली द्वीप जहां पर द्रोण पर्वत, द्रोणाचल पर्वत, अचल मतलब पर्वत, द्रोणाद्रि कह सकते हैं या द्रोणाचल, द्रोणाचल पर्वत था और उनके पुत्र रूप में प्रकट हुए गिरिराज गोवर्धन। कितने बड़े थे जब पृथ्वी में प्रकट हुए, 64 मील लंबाई, 40 मील चौड़ाई और 16 मील ऐसे हाइट, एक तो हो गया 64 मील लंबाई, मतलब ऐसे वाली लंबाई, 40 मील वाइड, 64 मील लॉन्ग एंड 16 माइल टॉल, 16 मील लंबे। लंबाई चौड़ाई मिलाओ तो कितने बड़े हो गए, 64 16 करते हैं लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट, एरिया निकालें अगर तो 64 इनटू 40 इनटू 16 कितना हुआ, कौन निकाल के दिखाएगा, करिए 64 इनटू 40 इनटू 16 एरिया आ जाएगा ना, कितना एरिया है भगवान कृष्ण ने जो धारण कर लिया है, कितना है 40960 मील एरिया है, वर्गाकार है, सोचिए जरा, है ना, ये एरिया है, सोचकर देखिए। ऐसा जो द्रोणाचल पर्वत था, एक ऋषि थे जिनके मन में आया, पुलस्त ऋषि काशी में रहते थे, बोले हमारी नगरी तो मुक्तदायिनी है, सभी को मुक्त करती है, लेकिन मन में साधुओं को क्या चाहिए, कंदरा, वृक्ष, जल, झरना, ये प्राकृतिक वातावरण आनंद प्रदान करता है, कैसे मिले, काशी में कोई पहाड़ नहीं, कोई अदरी नहीं, तो कहा एक काम करते हैं, चलते हैं और जाकर के द्रोण पर्वत से मांगते हैं, बहुत अचल है, बहुत पर्वत है, सुना है उनका पुत्र बड़ा लंबा चौड़ा पैदा हुआ है, बड़ा होता है ना गुड बेबी, तो बड़ा तगड़ा बच्चा पैदा हुआ है, 64 माइल लंबा है और 40 माइल चौड़ा है और 16 माइल लंबा है हाइट में, तो बोले इतना चौड़ा लंबा बच्चा हमें चाहिए। तो आए द्रोण पर्वत से, बोले दंडवत किया, अतिथि देवो भवा, ऋषि मुनियों की स्वागत करते थे, बोले आइए प्रभु क्या चाहिए, बोले आपका पुत्र चाहिए, जैसे दशरथ जी से विश्वामित्र ऋषि मांग कर ले गए थे राम लक्ष्मण, द्रोणाचल पर्वत से मांगे, बोले अपना पुत्र दे दीजिए गिरिराज गोवर्धन, बोले आप ले जाना चाहते हैं ठीक है, आपकी सेवा में रहेगा, संत सेवा ही परमो धर्म है, तो आप ले जाइए। द्रोणाचल पर्वत बोला नहीं, गोवर्धन जी बोले मैं नहीं जाऊंगा, मेरा प्राकट तो हुआ है गोलोक वृंदावन धाम से श्री राधा रमण के लीला करने के लिए, आप मुझे ले जा कैसे सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, अगर आप ले जाना ही चाहते, मेरे पिता की इच्छा है, तो एक शर्त है, क्या शर्त है, मुने यत्र स्थले भूमयाम स्थापियम मे करिष्यसि करिष्यामि च न उत्थानाम तद भूमया शपतो मम, शपथ लीजिए मुनि, क्या मुने यत्र स्थले भूमयाम, भूमि के किसी भी स्थल में स्थापयम में करिष्यसि, अगर आपने मेरी स्थापना कर दी, करिष्यामि च न उत्थापम, फिर दोबारा उठूंगा नहीं वहां से, तद भूमयाम शपतो मम, अगर आप ऐसी शपथ लेते तो चलने को तैयार हो। तो पुलस ऋषि बोले हमें योग बल से बड़ी शक्ति है, उठा लेंगे, उठा करके चल दिए। अब क्या उठा रहे हैं, भगवान की इच्छा से उठा रहे हैं, कोई भगवान की इच्छा के बगैर उठा नहीं सकता था कोई गिरिराज गोवर्धन को, तो भगवान की इच्छा थी। भगवान जब किसी भक्त को शक्ति देते हैं ना, तब वो कृष्ण शक्ति बिना ना ही परिवर्तन, कृष्ण की शक्ति के बिना कुछ नहीं हो सकता, कृष्ण शक्ति थी क्योंकि भाई बुलवाना है ना गिरिराज गोवर्धन को राधा रानी की इच्छा से, तो कृष्ण शक्ति दे रहे, पुलस ऋषि को उठा लो, तो उठा लिया, अदरवाइज उठा नहीं सकते हैं। अगर हम कोई विशाल कार्य करते हैं, कभी कभी मान होता है हमने किया, लेकिन एक बॉक्स जो है स्पीकर बॉक्स, उसको ये मान हो जाए मैं देखो कितना सुंदर बोलता हूं, कितना सुंदर गाता हूं, कौन गा रहा है, माइक पे जो बैठा है, लेकिन बॉक्स को मान हो गया मैं गा रहा हूं। तो ऐसे ही हम लोग कौन है, कई बार लिखते हैं आज के स्पीकर है, स्पीकर नहीं है, स्पीकर बॉक्स है, स्पीकर तो कृष्ण है, कृष्ण बोलते हैं तो भक्त बोलता है, कृष्ण शक्ति देते हैं तो बोलता है, कृष्ण बुखार कर दे आने से पहले पैरालाइज कर दे तो कोई बोल सकता है क्या, कृष्ण के, कृष्ण चाहते हैं उन्हीं को बुलवाते हैं, उन्हीं से सुनते हैं, कृष्ण की लीला। तो कृष्ण ने कहा पुलस्त ऋषि को जाइए, मन में विचार दिया, गए, उन्हीं को शक्ति दी, उठाइए, उठा लिया, उठा करके चल दिए। आए तो व्रजमंडल आ गया, गोवर्धन बोले आ गया मेरा स्थान, कृष्ण ने पहुंचा दिया अपने धाम तक, हे प्रभु मुझे यही विराजमान करिए, आपके चरण चिन्ह मुझ पर पड़े ऐसी मेरी मनोकामना है। तो पुलस ऋषि को मन में क्या हुआ कि मैं बहुत थक गया हूं, अभी उठाकर लाए अभी तक नहीं थके थे, अभी थकान हो रही है, और साथ में मुझे आ रहा है लघु शंका, तो चलो थोड़ी लघु शंका कर ले, लघु शंका के बहाने उन्होंने नीचे रखा। चलते चलते थकान से कभी कभी स्मरण चला जाता है, चला गया कि मुझे रखना नहीं था, शपथ ली थी लेकिन रख दिया, रख करके आए, लघु शंका आदि से निवृत्त होकर के यमुना स्नान किया, आकर के उठाने का प्रयास किया दोबारा से, तो उठाया। अब जो उठा सकते थे पहले, अब क्यों नहीं उठा रहे, क्योंकि कृष्ण की इच्छा नहीं है, तो कृष्ण की इच्छा के बिना हम कोई कार्य कर ही नहीं सकते, पूरा प्रयास कर रहे हैं लेकिन जोर लगाया हार गए, खुदा गुस्सा आ गया, बोले उठते नहीं हो तुम गोवर्धन, कहा आपको तो मैंने कहा था मुनि कि तद भूमयाम शपतो मम, आपने शपथ ली थी उस भूमि में आप मुझे रख देंगे, करिष्यामि च न उत्थानम, मैं दोबारा उठूंगा नहीं। कहा अच्छा ये बात है, इतने ढीठ हो, इतने जिद्दी हो, जाओ मैं तुम्हें श्राप देता हूं। गिरी त्वम अधिदृष्टे ना कृत्यो मे मनोरथा, मेरा मनोरथ पूरत नहीं किया आपने। हे दृष्ट बालक, क्या कहा, गिरी त्वम अधिदृष्टे ना कृतो मे मनोरथा तस्मात् तिलमात्रम ही नित्यम त्वम क्षीणताम व्रतः, मैं तुम्हें श्राप देता हूं तस्मात् तिलमात्रम ही, तिल के बराबर क्या हो जाए, नित्यम त्वम क्षीणताम त्वा, रोज तुम तिल 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 करके घटोगे। तो घटते घटते पांच, ये सतयुग की घटना है, जब भगवान आए भी नहीं है, गोलोक वृंदावन लीला भी नहीं हुई है, जब भगवान प्रकट भी नहीं हुए कृष्ण, तब पुलस्त्य ऋषि सतयुग में लाकर के छोड़ गए गोवर्धन को बरसाना, ये जहां पर ब्रजमंडल में भगवान आने वाले हैं अभी, तो पहले ही भगवान का सारा स्टेज सेट है कि भगवान आएंगे और अपनी लीला करेंगे। तो भगवान आने से पहले गिरिराज गोवर्धन पहुंच गए, अब बड़े प्रसन्न है, आहा मैं यहाँ आ गया हूं। ये सतयुग की घटना है, सतयुग के हिसाब से भगवान गिरिराज आए, तो इतने ऊंचे जिसका 40,000 वर्ग था, वो घटते 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 द्वापर में जब भगवान लीला करने आए तो कितने रह गए, 7 कोस के रह गए, 21 किलोमीटर का ही सरकमफ्रेंस रह गया, 7 कोस, 1 कोस में 3 किलोमीटर, लेकिन वो घट रहे घट रहे घट रहे। और आज जब भगवान के अगर हम देखें गोलोक धाम जाने के बाद नित्य लीला में जा रहे हैं भगवान, तो उसके बाद में अब फिर धीरे धीरे घट रहा है। आज अब गोवर्धन परिक्रमा में लगाए, मुझे याद है कि हम लोग मथुरा के ही रहने वाले हैं, तो हम जब बचपन में जाते थे गिरिराज गोवर्धन बहुत विशाल दिखते थे, लेकिन अभी बिल्डिंग बन गई, बॉर्डर्स बन गए, फेंसिंग लग गई, और गिरिराज गोवर्धन कटते कटते बीच में रोड आ गई, बस स्टैंड्स आ गए, शॉप्स आ गए। कोई आज जाकर गिरिराज को पाएगा तो उसको वो आनंद दिखेगा नहीं जो आनंद था। चेतन महाप्रभु जब 500 वर्ष पूर्व आए तो बहुत ही बड़ा आनंद था, लेकिन आज वो आनंद घट रहा है क्योंकि तिल तिल मात्र गिरिराज जा रहे हैं। आप देखेंगे जमीन के भूतल के अंदर प्रवेश करते चले जा रहे हैं, कई स्थानों में ऐसा लगेगा बस एक शिला से निकली हुई है पत्थर, है ना, लेकिन उन पत्थरों को पैर लगाने से अपराध लगता है। चेतन महाप्रभु ने कहा हमको इन पत्थरों को, शिलाओं को पैर नहीं लगाना चाहिए। और कई लोगों के मन में आता है कि चलो यहां से एक पत्थर उठाकर ले चलूं और घर पे ले जाकर के पूजूं, जैसे हमारे मंदिर में भी पूजन होता है। श्रील प्रभुपाद जी ने लिखा कृष्णा बुक के अंदर भागवत में, हर एक भक्त का कर्तव्य है गोवर्धन के शिलाखंडों की पूजा की जाए, क्योंकि शिलाखंड में दो चीजें हैं इस संसार में जिनको प्राण प्रतिष्ठा की आवश्यकता नहीं, कौन सी है, शालिग्राम जो कि गंडकी से प्राप्त होते हैं, और श्री गोवर्धन गिरिराज शिला यो की गोवर्धन से प्राप्त होती है। लेकिन गोवर्धन जी से जो प्राप्त है ये शिला अपने आप से नहीं लेनी चाहिए, कोई व्रजवासी या कोई वरिष्ठ भक्त आपको दे कि आप इसकी सेवा के योग्य हैं तब सेवा करनी चाहिए। अगर हम उसको ऐसे ही उठा करके ले आए तो वो ऐसे ही हमारी सेवा से रुष्ट होकर वापिस भी चले जाएंगे। आप कहेंगे कैसे, क्योंकि व्रज गच्छति, व्रज चलता है, गिरिराज वापिस चले जाएंगे। एक बार एक कथा आती है उसमें लिखा था कि एक भक्त थे, वो बिना बताए गिरिराज गोवर्धन का शिलाखंड बैग में रख के ले आए। कहते हैं जितना शिलाखंड होता उतने ग्राम सोना वहां गोवर्धन पे रखना पड़ता है, सोना नहीं रख सकते तो चांदी रखो या कुछ तो दक्षिणा रखो, 5,000-10,000 रुपए किसी व्रजवासी को दो तो उनसे ले सकते हैं। ये नहीं कि चुपके से एक पत्थर रुका जेब में रखा, आंखें लगाए, मुंह बनाए, बोले हो गया गिरिराज। गिरिराज जी को पाने के लिए कुछ धन देना पड़ता है, शास्त्र विधि है, कुछ स्वर्ण वहां रखें तो इस प्रकार से, या फिर कोई वरिष्ठ भक्त के द्वारा हमको प्रदान किया जाए। वो भक्त लेकर चले गए अपने साथ और उनका मित्र उनके घर पे आया, कहा बहुत सुंदर गिरिराज है आपके यहाँ तो। कहा हाँ बहुत सुंदर है। कहा कैसे लाए आप? कहा हम तो ऐसे ले आए थे, लेकिन अब ले आए तो पत्थर है, कहाँ जाने वाला है। तो उनका भक्त दस मित्र था, वो बोला नहीं आपने गलत किया, आपको कुछ स्वर्ण उतने ग्राम रखना चाहिए था, स्वर्ण नहीं रखा तो कुछ दान आदि देना चाहिए था, मुफ्त में नहीं भगवान की सेवा प्राप्त करनी चाहिए। कहा अच्छा हम तो ले आया, ठीक है रखा है रखा, रहने दीजिए। तो उनके भक्त मित्र ने बोला पता है मैं गिरिराज गोवर्धन ही जा रहा हूं, चलो आपके गिरिराज जी का प्रणाम कर लो। तो आए गिरिराज जी को प्रणाम करने, तो प्रणाम करने के बाद में चले गए। जब चले गए तो मित्र आया बाद में भोग लगाने के लिए, देखा अल्टर में भगवान ने, गिरिराज कहाँ गए? तो भी हैरान हो गया कि मेरे गिरिराज जी कहाँ चले गए। तो दूसरा जो भक्त मित्र था वो जब गोवर्धन पहुंचा तो उसके उसमें बैग में कई सारी पुस्तकें थी। उसने पुस्तक निकाली तो देखा कुछ एक शिलाखंड पड़ा है। तो शिलाखंड बोला, ये गिरिराज जी कैसे आ गए? ओहो, मैंने सही कहा था, गिरिराज जी बिना इच्छा के जाते नहीं है। जब पुलस ऋषि की इच्छा के बिना विरज से नहीं गए तो कैसे हमारी इच्छा से चले जाएंगे? इतने बड़े ऋषि की इच्छा से नहीं गए। तो फिर वो वापस उन्होंने वहां पर उसको स्थापना कर दी, भक्त रखाया। तो गिरिराज जी ऐसे बैग में चले गए और बैग से वहां चले गए, अपनी इच्छा से वापस भी चले जाते हैं। अब सुनने में तो ये बड़ा ऐसा लगता है, ऐसा कैसे हो सकता है? यही श्रद्धा चाहिए। यही गीता में भगवान ने कहा 9वें अध्याय के 3रे श्लोक में, आश्रद्धा दान पुरुषस्य धर्मस्य यस्य परंतपः आप्राप्य माम निर्वर्तते मृत्यु संसार वर्तमने। भगवत गीता 9वें अध्याय का 3रा श्लोक क्या कहते हैं कि अगर अश्रद्धा दान पुरुषस्य, कोई पुरुष अश्रद्धावान होगा तो फिर क्या हो जाएगा? धर्मस्य यस्य परंतप, धर्म के कार्यों में अगर अश्रद्धावान है, गिरिराज के प्रति अश्रद्धावान है, अगर वो विग्रह के प्रति अश्रद्धावान है, व्रज के प्रति अश्रद्धावान है, आप्राप्य माम निर्वतते, निर्वतते मतलब है वापिस आएगा। कहां? मृत्यु संसार वर्तमने, वापिस आना पड़ता है। श्रद्धावान होना बहुत जरूरी है। रूप गोस्वामी कहते आदो श्रद्धा, प्रथम सीढ़ी श्रद्धा, तथा साधु संग, तथा भजन क्रिया। भजन बाद में, पहले श्रद्धा है। तो लोग कहते श्रद्धा नहीं होती तो हम आते क्यों? पर ये श्रद्धा कोमल श्रद्धा है जो कि कभी भी टूट सकती है। हमें श्रद्धा कैसी चाहिए? ऐसी श्रद्धा चाहिए जो परिपक्व श्रद्धा हो, निष्ठावान हो, कभी टूटे ना। तो ऐसे गिरिराज गोवर्धन की आप जानते हैं, बहुत सुंदर गिरिराज गोवर्धन है। आचार्यों ने वर्णन किया, इनका मुखारविंद भी है, जो मुखारविंद है ना, जहां पर जटीपुरा में दूध चढ़ाते हैं, मुखारविंद इनका मुख है। और मानसी गंगा इनकी आंखें हैं, और राधा कुंड पर इनकी जिह्वा रखी हुई है। रघुनाथ दास गोस्वामी को प्राप्त हुआ था जिह्वा, तो जिह्वा है राधा कुंड पर। कुसुम सरोवर इनके कान है और गोविंद कुंड इनके अधरामृत है। इस प्रकार से भगवान का पूरा स्वरूप रखा हुआ है। तो जब हम अधरामृत बनाते हैं गिरिराज शिला पे तो वो क्या है? हाँ, गोविंद कुंड। जब हम कान बनाते हैं तो क्या है? कुसुम सरोवर, है ना। जब हम आंखें बनाते हैं तो क्या है? मानसी गंगा। जब हम जिह्वा बनाते हैं तो क्या है? राधा कुंड, है ना। और मुखारविंद जटीपुरा मुख। तो इस प्रकार से भगवान का, इसीलिए आप देखेंगे गिरिराज शिला में पूरा शरीर नहीं बनाते हैं, हाथ पैर बनाते हैं कभी लकड़ी लगा करके फिर गिरिराज लगाया, नहीं ऐसे नहीं करते हैं, खाली गिरिराज का मुख, क्योंकि मुख का वर्णन किया इस प्रकार से। और ये वराह पुराण में भी आया है, जो भी इस वैष्णव विधि रूप से परिक्रमा करेगा उसे पुनः इस जगत में नहीं आना पड़ेगा। इस गिरिराज की भी परिक्रमा कोई करेगा, वराह पुराण में लिखा है, तो उसको इस भौतिक जगत में नहीं आना पड़ेगा। तो मुखारविंद भी दो बताए गए, एक जटीपुरा और कभी कभी मानसी गंगा को भी मुखारविंद बताते हैं, और राधा कुंड श्याम कुंड को नेत्र बताते, ऐसा भी लोग बोलते हैं। तो क्यों ऐसा दो दो रूप से क्यों वर्णन किया गया, यह प्रश्न उठता है। तो इस प्रश्न के संशय रहित होने के लिए आचार्यों ने कहा कि गाय है, मुख को सीधा करके खड़ी है तो यह मानसी गंगा है, राधा कुंड श्याम कुंड नेत्र है। लेकिन वही गाय जब उसके पेट में खुजली हो तो क्या करती है? अपने मुख को घुमा लेती, तो बैठी तो ऐसे है लेकिन मुख को घुमा लिया। तो जब मुंह इधर आ गया तो जटीपुरा में मुंह आ गया, मानसी गंगा में ही आ गया। इस प्रकार से परिवर्तन हुआ। तो एक गाय खड़े रूप में मान सकते हैं, एक घूमे रूप में। कुछ लोग मोर के रूप में भी इसका वर्णन करते हैं कि जैसे मयूर के रूप में गिरिराज प्रवेश की खड़े हुए हैं। तो ये गिरिराज बहुत कुछ प्रदान किए। आप सब जानते हैं आज के दिन की लीला क्या है कि इंद्र की पूजा चल रही थी और इंद्र की पूजा को भंग करके भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि अभी मुझे क्या करना है, इस गिरिराज की पूजा करानी है। तो सभी ने गिरिराज के लिए कई प्रकार के भोग बनाए जो गोवर्धन पूजा कहलाती है। तो ये काफी दिनों की लीला को एक ही दिन में हम चर्चा करते हैं। वैसे आज का जो दिवस है खाली गोवर्धन पूजा का है, अभी बारिश नहीं होती है, लेकिन भक्तगण अधिकतर इसी दिन पे सारी लीला सुनाते हैं कि वर्षा हुई, 7 दिन 7 रात तक उठाए। आज के दिन तो गोवर्धन पूजा करके उठाए गिरिराज को, इसके 7 दिन 7 रात तक फिर वर्षा होती रही। और फिर जब इंद्र को पता चल गया तो इंद्र घबरा रहा था, मैं जाऊं किस मुंह से, अभी हो सकता है ना हमसे जब अपराध हो जाए तो बोले जाऊं किस मुंह से। तो इंद्र ने कहा मैं जाऊं किस मुंह से, तो भगवान एक के बड़े प्रेमी है। किसके प्रेमी है? गाय के प्रेमी है, है ना। तो कृष्ण जो है वो गाय के प्रेमी है, इसलिए उनका नाम है गोपाल। लेकिन फिर भी लोग भैंस का दूध भगवान को भोग लगाते हैं, लेकिन समझते नहीं भगवान का नाम गोपाल है, भैंस पाल नहीं है। तो है ना, आज के दिन गो पूजा होती है, इसीलिए गाय गोपाल है कृष्ण। कृष्ण जो है वो गाय का पालन करने बताते हैं, गोविंद नाम है, गायों के रक्षक है ना, गायों के पालन करने वाले। तो इस प्रकार से जो ये गोपाल है, इनको जानते थे गायों के हितैषी हैं। नमो ब्राह्मण देवाय गौ ब्राह्मण हिताय च जगत हिताय कृष्णाय गोविंदाय नमो नमः। गोविंद कहते हैं दो चीजों के, ब्राह्मणों के और एक गाय के हितैषी। तो इंद्र लेके आया, आचार्यों ने वर्णन किया, ढाई वर्ष बाद, ढाई साल बाद आया इंद्र का जो मान भंग हुआ है ना, उसको अपनी गलती का एहसास, पृथ्वी के ढाई वर्ष बीत गए थे, जैसे ब्रह्म विमोहन लीला में एक वर्ष बीत गया था। तो जब इंद्र को एहसास हुआ और इंद्र ये सात दिन की वर्षा समाप्त होने के बाद आया, इसको ढाई वर्ष बीत गए थे, ढाई साल बाद इंद्र मान लीला भंग लीला हुई है। तो इसलिए इंद्र स्तुति अलग अध्याय है, गोवर्धन पूजा अलग अध्याय है। तो ये कई बार इस प्रकार से वर्णन है कि इंद्र बहुत दिनों बाद, ढाई वर्ष बाद आया, पृथ्वी के ढाई वर्ष बीत गए तब आया। और भगवान भी बोलेंगे लीला कभी करी, अभी माफी मांगने आ रहा है, देखो है। तो क्या करें, देवता इसी बुद्धि के हैं। तो भगवान ने जो ये गिरिराज को उठाया, गोवर्धन पूजा करी, तो आइए गोवर्धन की एक विशेष लीला का चर्चा करते हैं, जो गोवर्धन पूजा दिवाली के अगले दिन होती है, दीपावली के। कहते हैं अन्नकूट स्थान एई देखी श्रीनिवास, एई स्थाने दर्शन पूर्ण हए अभिलाष। जिस स्थान पे भोग लगाया गया, ये दान निर्वर्तन कुंड के पास में, दान घाटी के पास है वो स्थान, अन्नकूट स्थान, जहां पर अनेक अनेक लोगों ने भोग लगाया। तो आप भी आज गोवर्धन पर्वत बनाएंगे अपने मंदिर में, सभी बना रहे हैं। तो गोवर्धन वहां पर कितना भोग लगाया था पता है, लोग हमारे यहाँ बनाते हैं 10-15 किलो चावल या 50 किलो चावल, 100 किलो बना लो, लेकिन वहां लगे थे 70 करोड़ पौंड चावल। कितना? 70 करोड़ पौंड चावल का भोग लगा था, और अरबों पूड़ियां लगी थी, अरबों अरबों पूड़ियां। कहा गया है ऐसा, मेद हैते गंभीरा वचन उच्चारण अन्योर बार बार कोए। ये भक्ति रत्नाकर ग्रंथ में आया है, भक्ति रत्नाकर में कहा गया कि जिसकी बुद्धि होगी वो समझ पाएगा, वरना इतनी बड़ी लीला को कहेगा ऐसे थोड़ी होता है। कितना? 70 करोड़ पौंड चावल और अरबों पूड़ी का भोग लगाया, और सब खा जाते थे गोवर्धन, और जब खा जाते थे एक ही बार में गप करके खा जाते थे, और बोलते क्या थे, मेद आईते गंभीरा वचन उच्चारण, जोर जोर से क्या बोल रहे थे, बोलिए अन्योर अन्योर अन्योर। भाई कितना खाओगे, 70 पूर्ण चावल खा लिया, अरबों पूड़ी खा ली, अभी कहते अन्य और, वो गांव का नाम ही पड़ गया जहां चिल्ला है अन्य और ग्राम, अन्य और ग्राम जटीपुरा जो है वही माधवेंद्रपुरी की समाधि है। माधवेंद्रपुरी को नाम था यतिराज, यति मतलब सन्यासी जो भिक्षाटन करके पाते हैं, यति राज के कारण उस स्थान का नाम पड़ा यतिपुरा, क्योंकि यतिपुर करते यहां रहते हैं, बाद में यतिपुरा का नाम अभ्रंश होकर हो गया जटीपुरा। तो जटीपुरा गांव नहीं था, यतिपुरा था। यतिपुरा क्यों रहा? मधवेनपुरी के कारण। असलियत में वो स्थान था अन्योर ग्राम, अन्योर गांव, जहां पर गिरिराज चिल्लाए थे मुझे और चाहिए। बलराम बोले ये क्या लीला है, और मांग रहा है और मांग रहा है। तो बोले भगवान को अगर प्रसन्न करना है तो क्या करना पड़ेगा, तुलसी पत्र रखना पड़ेगा। तुलसी का एक पत्र रखा, तुरंत जोर से डकार लिए, बोले हाँ अभी हो गया, संतुष्टि हो गई। भोग लगाने के बाद में भगवान श्री कृष्ण ने कहा चलिए थोड़ा सा कीर्तन किया जाए, है ना, और परिक्रमा करिए, गौ आदियों को लेकर के पीछे आरोहण करके बैलगाड़ियों में बैठ करके पैदल जो बुजुर्ग आदि हैं उनको बिठा करके और पूरे गिरिराज की परिक्रमा करिए। तो आइए चलो एक बार परिक्रमा करते कीर्तन के साथ में। गिरि गोवर्धन जय, गिरि गोवर्धन, गिरि गोवर्धन जय, गिरि गोवर्धन, गिरि गोवर्धन जय, गिरि गोवर्धन, हाँ गिरि गोवर्धन जय, गिरि गोवर्धन, गिरि गोवर्धन जय, गिरि गोवर्धन, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। जोर से गोवर्धन परिक्रमा है। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा हरे रामा राम रामा हरे हरे। बोलो हरे कृष्णा हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा हरि बोल राधे श्याम। हे हरे कृष्णा 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 हरे 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 रामा राम रामा हरे 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 कृष्णा हरि बोल। जय गिरि गोवर्धन जय गिरि गोवर्धन गिरि गोवर्धन जय गिरि जय गिरि गोवर्धन जय गिरि गोवर्धन गिरि गोवर्धन हो गिरि गोवर्धन जय गिरि गोवर्धन जय गिरि गोवर्धन जय गिरि गोवर्धन हरि हरि बो। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो इस प्रकार से परिक्रमा हुई। ऐसे तो नहीं हुई थी, बहुत उत्साह में थी, हमारे तो कच्चा उत्साह था। तो इस प्रकार से बहुत सुंदर परिक्रमा हुआ। और परिक्रमा होने के बाद में जब इंद्र को पता चला, रे आज हमारा भोजन नहीं आया। इंद्र पूजा हर वर्ष होती थी वर्षा करने के लिए, देखिए देवता कैसे होते हैं। बस मात्र एक चीज नहीं दी क्या, आज फल फ्रूट ही तो नहीं दिया। मान लीजिए कोई भक्त सेवा करके आए, उसको प्रसाद ना मिले तो क्या उसको कौन छोड़ देगा। लेकिन ये तो छोड़ दिया ना, भगवान की पार्टी। इंद्र इतना अंधद्रुमुद हो गया, धन अंधद्रुमुद कहते हैं, धन के अंधा हो गया इतना कि अपने संवर्तक को बुला के कहता है, कर दो विशाल वर्षा, जल मग्न कर दो पूरे ब्रजमंडल को, आज पता चले इन्होंने किससे पंगा लिया है। हाँ भगवान कह रहे हैं, हाँ ठीक है कर लो, जो माने कर लो, अभी पता चलेगा बाद में। तो जब जोर का तूफान आया, बारिश कैसी थी कहते हैं, खंबे के समान एक बूंद थी, हाथी की सूंड के समान एक बूंद थी। ऐसी बूंद कभी देखी नहीं है हम लोगों ने, तो देखी नहीं कभी ऐसी। जब केदारनाथ की बाढ़ आई थी, खाली 2.5 मिनट के लिए आई थी, उसको देख करके लगता है कितना पानी था। और ये 7 दिन 7 रात तक संवर्तक की वर्षा, सोचे कितना पानी रहा होगा। जब केदारनाथ में आई सब कुछ बह गया था, तो सोचो ब्रजमंडल में कंपेयर करो, 2.5 मिनट की थी ये, 7 दिन 7 रात की थी, कितनी बारिश हुई होगी। पूरा टंकी खोल दिया, बोला पाइप सारे लगा दो, ऐरावत की सूंड में भर के करो, कैसे भी करके करो, आज ब्रजमंडल को जलमग्न कर दो, पता चले किससे पंगा लिया, मेरा फ्रूट नहीं पहुंचा आज। गुस्सा आ गया उसको बहुत, कहा कि ठीक है अभी मैं बताऊंगा। तो जब बारिश शुरू हुई तो सभी लोग चिल्लाए, हे कृष्ण हे कान्हा रक्षा माम। नंद को बोलने लगे, देखिए आपके पुत्र की बात माने, देखो गड़बड़ हो गया ना, देखो रुष्ट हो गया, देवता इसने अगर ना पहुंचे तो रुष्ट हो जाते हैं, इसलिए देवता की पूजा से अच्छी है कृष्ण पूजा, क्योंकि देवताओं की पूजा में देवता रुष्ट होते हैं तो वो गलत करते हैं, लेकिन कृष्ण ऐसे पूजा करो न करो कभी आपसे, वो दयालु भगवान है, वो कुछ नहीं कहते, रुष्ट नहीं होते हैं, लेकिन देवता रुष्ट हो जाते। तो देवता रुष्ट हो गया, भगवान के पास आए, भगवान ने मानसी गंगा के पास जो स्थान हमने बताया श्री हरिदेव मंदिर, उस स्थान पे भगवान आए। कितने वर्ष के थे? 7 वर्ष के। 7 साल के भगवान ने अपने एक हाथ से ऐसे कर करके गिरिराज को उठाया 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 और उसके नीचे प्रवेश कर गए और एक चट्टान के ऊपर, इसलिए आप देखिए श्री हरिदेव मंदिर थोड़ा ऊंचा है, उसी चट्टान पर खड़े हो गए और कैसे उठाया, पूरा जोर लगाया और ऐसे करके उठा लिया, है ना, कैसे उठाया ऐसे, ये उल्टे हाथ से उठाया, है ना, उल्टे हाथ से उठाया, उल्टे हाथ की कन्नी उंगली से उठाया, अरे नहीं नहीं नख ऊपर गिरिधारियों कन्ने उंगली के नाखून से, कितना था 21 किलोमीटर का पर्वत कन्नी उंगली से ऐसे करके उठा के भगवान खड़े हो गए। कैसे? भागवत जी में वर्णन है जैसे कुकुर मुत्ता मशरूम को कोई बच्चा उठा लेता है ऐसे हंसते हंसते, ये नहीं कैसे उठाया तो मम्मी बचाओ ऐसे नहीं था, कैसे उठाया कुकुर मुत्ता जैसे उठाते हैं ऐसे भगवान ने धारण किया और बांसुरी बजाने लगे, त्रिभंग ललित रूप धारण कर लिया, टेढ़े होकर खड़े हो गए। कारण क्या है भगवान की इस लीला का, ये हम चर्चा करेंगे विशेष रूप से। कहा गया है शास्त्रों में इस का बहुत गुहितम कारण बताया गया है। गोवर्धन लीला के विषय तो अनेक उद्देश्य है, एक लीला करे प्रभु करे 5-7, एक ही लीला में प्रभु 5-7 काम निपटा देते हैं। क्या कारण था? रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में कहते हैं जीव के अंदर 18 प्रकार के दोष हैं। जीव के अंदर कितने दोष हैं? 18 प्रकार के दोष हैं, लेकिन कृष्ण दोषों से रहित हैं, गुणों से रहित हैं, त्रिगुणातीत हैं, दोष रहित हैं। तो इन्होंने कहा इंद्र के मन में एक भावना आई है मत्सर की भावना, काम क्रोध है ना, लोभ मोह मद मत्सर, मत्सर मतलब जलन द्वेष, वैसे तो ये अलग अलग प्रकार है लेकिन फिर भी माने अगर तो स्वाभाविक रूप में अप्रोक्सीमेटली मत्सर मींस जलन, वैसे सब अलग अलग है तो इसमें भी नहीं जाएंगे वरना बहुत डिटेल डिस्क्रिप्शन है। मत्सर भी 5 प्रकार के मत्सर होते हैं, तो जय मत्सर मतलब है कई आचार्य बोलते हैं मच्छर के समान, है ना, मास्टर जिसको मच्छर मत्सर है उसी से समझ सकते हैं। मच्छर कितने दिन का जीवन होता है, पी करता है थोड़ा सा और किसी की भी ताली में मर जाता है बेचारा, तो वैसे ही मत्सरता है, मत्सरता आने से फिर हमें भगवान ऐसे ताली रूप में मच्छर के समान मार देते हैं। इंद्र को मत्सर भावना आई, भगवान ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, आ जाओ तुम्हारा भी मच्छर के समान समाप्त करते। तो भगवान ने बुलाया, इंद्र की पूजा को जब समाप्त किया तो उससे मत्सर की भावना को एकदम बहुत वृद्धि हो गई, बहुत जलन हो गई, ये छोटे से बच्चे की बात मानते हैं ग्वाले गांव वाले, मेरी पूजा बंद कर दी। तो गोवर्धन धारण जब भगवान ने किया तो उसके लीला का कारण क्या है, कई बार सारी गोपियां ग्वाल बाल कहते थे रात में रास करते हो हमसे मिलते नहीं, और गोपियां ग्वाले कहते हैं रात में रास करते हो हमसे मिलते नहीं, और गोपियां कहती हैं दिन में ग्वालों के साथ रहते हो हमसे मिलते नहीं, तो हमको प्रभु कोई तो ऐसा दिन हो 24 घंटे आपको मिलने का मौका मिले। भगवान ने कहा ये भाव अंगीकार किया, बोले सबके मन में मेरा संग पाने की अभिलाषा है, कोई ऐसी लीला करो जिसमें कोई ऑब्स्टेकल ही ना हो। अगर मान लीजिए वैसे भगवान बुलाते कि आइए सत्संग करेंगे आज बैठ करके, है ना, इंद्र के बारे में चर्चा करेंगे, इंद्र कैसा दोषी है, तो 2-4 घंटे बाद किसी की मेरुदंड में दर्द होता, किसी की कमर में होता, किसी को खांसी आ जाती, किसी को प्यास लग जाती, उठ के चले जाते। भगवान ने कहा ऐसा भयानक लीला करता हूं कि बाहर जाने में भी डर लगे, मान लो सोचो मैं बाहर अभी बारिश करवा दूं, रेन वाटर हो जाए चारों तरफ, है ना, या फिर कोई कुल्हाड़े लेके खड़ा हो जाए, बोले जो क्लास से बाहर निकला उसका मृत्यु आज, सारे के सारे वहीं स्थापित हो जाएंगे, बोले नहीं प्रभु बाहर नहीं जाना, फिर कथा में रुचि आएगी और जो देखेगा ना वो बोलेगा वासुदेवम कथा रुचि कथा रुचि नहीं है डर के मारे। तो सारे के सारे अंदर भगवान ने कहा आ जाओ, पूरे 84 कोस के लोग अपने गाय बैल बछड़ा बच्चे सब लेकर के आ गए और यहाँ पर कहा गया है शास्त्रों में भगवान के दो प्रकार के रूप हैं, एक आश्रय विग्रह एक विषय विग्रह। विषय विग्रह मतलब संसार में दुनिया भगवान की आश्रित है, भागवत के 10 विषयों में से एक विषय आश्रय विग्रह, आश्रय विषय। तो ये आश्रय है सबके, भगवान विषय वस्तु है और हम आश्रय हैं। लेकिन इस लीला में भगवान ने उल्टा किया, सब लोग तो बन गए विषय और भगवान बन गए सबके आश्रय। ये पहली बार है जहां भगवान सबके आश्रित है क्योंकि सबकी मनोकामना पूर्ण कर रहे हैं। और क्यों प्रमुख है ये लीला? एक लीला करे प्रभु करे 5-7, एक तो किया आश्रय विग्रह बन गए, विग्रह विषय विग्रह से क्या बन गए? आश्रय विग्रह। दूसरा, सभी की इच्छा पूर्ति करी। तीसरा, एक ही लीला ऐसी है पूरी भागवत के अंदर जिस लीला में भगवान ने अपने 12 रसों का आस्वादन किया। कितने रस? हमेशा तो दुनिया को रस आस्वादन कराते हैं, इस लीला में भगवान ने आश्रय विग्रह बनकर भक्तों को विषय विग्रह बनाकर 12 रसों का आस्वादन किया, ऐसा रूप गोस्वामी ने कहा। 12 रस आस्वादन करते हैं, तो द्वादश रस आप जानते होंगे, तो द्वादश रस यहां पर उन्होंने अनुभव किए हैं। आप जान सकते हैं जैसे विषय विग्रह के रूप में कंस के महल में जब कृष्ण बलराम को लाया गया तो सभी ग्वाल बालों के विषय थे कौन? भगवान कृष्ण, उसको कहते हैं विषय विग्रह। उसमें जैसे जैसे लोगों के मन में भावना थी वैसे वैसे भगवान दिख रहे थे। जाकी रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति ने देखी तैसी, वैसी मूर्ति दिख रही थी। ग्वाले कहते थे काना लगा के मारियो एक घूसा, जोर से छोड़ियो मत मुष्टिक को, चारों को छोड़ना नहीं, तो कमान कमान बकअप कर रहे थे ग्वाले है। और जो बड़े बड़े पहलवान थे उनको लग रहा था ओ ये बच्चा क्या लड़ेगा हमसे, और जो गोपियां आदि थी उनको लग रहा था, जो ग्वालिनी थी उनको लग रहा था ओ हो कितने मृदुल इनके कोमल पैर है, कहां ये किस जगह आ गए, ये इनके लिए स्थान ठीक नहीं है। और देवकी वासुदेव को लग रहा था हमारा पुत्र है ना। इस प्रकार से नंद यशोदा सबको अलग अलग अनुभव हो रहे हैं जैसे जैसे उनके मन में भगवान का विषय है। ऐसे ही आप जब मंदिर आएंगे आपको जिस विषय से आप भगवान को देखेंगे उसी विषय से अनुभव होगा, क्योंकि हम आश्रय है भगवान विषय है। पर इस लीला में उल्टा है, भगवान आश्रय है बाकी सब विषय है। कैसे वर्णन किया गया? कहते हैं कि शैलो अश्मी रूप में भगवान ऊपर गिरिराज बने, गिरिराज को उठा लिए और ऊपर संवर्तक ने बारिश प्रारंभ कर दी और अंदर कीर्तन चल रहा है, डांस चल रहा है, अंदर डांस हो रहा है बढ़िया मजे से। रेन वाटर डांस कोई नया नहीं है, प्राचीन समय से चल रहा है। अभी लोग सोचते हैं रेन वाटर डांस 500-1000 रुपया देके डांस करते हैं, वहां पर रेन हो रही है वो भी 7 दिन 7 रात, कोई टिकट नहीं, फ्री कॉस्ट, नाचो हरि वो हरि वो हरि वो, खूब नृत्य करो खूब आनंद करो कोई दिक्कत नहीं। और भगवान का दर्शन, हर एक ग्वाल बाल को ये लग रहा है भगवान तो मुझे को देख रहे हैं, टकटकी लगा करके प्रभु अपनी नजर उधर तो कर लो नहीं, पूरा 7 दिन 7 रात। तो जिसको देखेंगे मान लीजिए जैसे कथा कर रहे हो और जो सो रहा उसकी ओर देख लो तो वैसे हो जाता थोड़ा, हाँ प्रभु हम सुन रहे हैं आपकी क्लास। तो ऐसे ही भगवान जिसको देखते थे उसी को आनंद का अनुभव होता, भगवान को देखते अरे प्रभु आप हमको देख रहे हैं, आ बहुत अच्छा चल रहा है। तो भगवान भगवान देख एक ही रहे लेकिन सबकी दृष्टि में ऐसे देख रहे हैं, सबको ऐसा लग रहा है। हमको 84 कोस में सोचो कितने लोग रहते होंगे उस विशाल गांव में, सबको ऐसा अनुभव हो रहा है हमें देख रहे हैं। तो कैसा कैसा अनुभव भगवान को हो रहा है उसकी व्याख्यान रूप गोस्वामी करते हैं। कहते हैं यहां पर भगवान ने शांत रस को भी दर्शाया। पहला रस कौन सा है? शांत रस। शांत रस कैसे? भगवान ने गिरिराज गोवर्धन को उठा रखा है तो हो सकता है देखा हम ही हैं, लेकिन भगवान ने बड़ी दीनता का भाव रखा हुआ, शांत रूप से, कोई प्राइड नहीं है भगवान को, कोई अहंकार नहीं है, कहा वो अहंकारी है मैं दयालु हूं, भगवान ऐसे खड़े दीन भाव से इसको कहा शांत रस का आस्वादन कर रहे हैं गिरिराज को उठा करके। दूसरा कहा कि जो ग्वाल बाल सखा थे इन सब ने भी अपनी अपनी लकुटी और डंडे लगा रखे थे, बोले काना डरियो मत हम भी तेरे साथ हैं, सबने लगा लिए अपने अपने, आ जोर लगा लगा, ऐसे सोच रहे थे हम भी थोड़ा हेल्प कर रहे हैं। तो भगवान को बड़ा अच्छा लग रहा था, भगवान मनी मन हंस रहे थे कि है ना देखो ये कितने नादान है, जानते नहीं मैं ब्रह्मांडों को प्रकट करने वाला ब्रह्मांड नायक, आज मैंने गिरिराज को धारण किया ये सोच रहे इनके डंडे से धारण किया हुआ, ये हंस रहे हैं हास रस का स्वादन कर रहे हैं, मनी मन में मुस्कुरा रहे हैं भगवान। तो दूसरा रस है हास्य रस। तीसरा रस आस्वादन करते हैं, कहते हैं देखो हैं तो बालक ही, बेचारे बच्चे हैं, मेरे नित्य पार्षद हैं, परंतु इनकी स्मरण शक्ति मैंने ही बुलाई है अपनी योग माया से, ये क्या जानेंगे। तो वात्सल रस का भी आस्वादन कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। चार प्रकार के भगवान के सखा भक्ति रसामृत सिंधु में वर्णन किया, किंकरी आदि बिल्कुल छोटे छोटे बच्चे थे और बहुत आस्वादन कर रहे हैं, वाह कृष्ण वाह कितना अच्छा लग रहा है, उनको मालूम ही नहीं क्या क्या हो रहा है, बाहर भयानक मूसलाधार वर्षा है, यह आनंद हो रहा है अंदर, तो ये वात्सल रस का अनुभव कर रहे हैं। साथ ही में कुछ यशोदा माई की सखियां दही बना के ले आई थी, बोले अब 7 दिन रहे ना, माओं को होता है बच्चा जा रहा हो तो पैक करके देती है, बेटा खा लेना रस्ते में, तो इतनी बारिश में भी ग्वाल बाल की जो माएं थी वो सब की सब कुछ ना कुछ ले आई, दही मक्खन, कृष्ण को कुछ खिलाएंगे, 7 दिन उठाएगा कितने दिन पता नहीं, तो ले आए अपने साथ, मक्खन खिलाया, कड़ी खिला रहे हैं, दूध खिला रहे हैं, भगवान ऐसे और खा भी रहे हैं साथ में, और खा रहे हैं तो कई कई दिन से कड़ी खराब हो गई है, शुरू शुरू में तो डर लग रहा था कि इतनी बारिश है, लेकिन धीरे 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 भगवान को देखने से आनंद का अनुभव होने लगा, तो मटकी में रखा रखा खराब हो गया, कड़ी खराब हो गई, जब कड़ी खराब हो गई मठा खराब हो गया, तो ग्वालिनों ने कहा ओहो इसमें तो मक्खी लग रही है, तो उसको फेंक दिया, जब फेंका तो उससे दुर्गंध उत्पन्न होने लगी, जब दुर्गंध उत्पन्न हुई तो भगवान ने कहा ये मेरी लीला में दुर्गंध कहां से आ गई, तो भगवान ने जब किया तो विभत्स रस का आस्वादन किया, भयानक रस जिसे कहते हैं कि यहां दुर्गंध भी है, जैसे आप जटीपुरा जाए तो वहां पे लोग दूध चढ़ाते हैं, परिक्रमा करते हैं, दूध में बाल्टी में छेद कर लेते हैं और फिर पूरे में घूमते हैं, अब यहाँ आप तो घूम गए, पीछे से मक्खियां घूमती हैं, नालियों में दूध पड़ा हुआ है, ये तरीका ठीक नहीं है, है ना, गिरिराज जी पर दूध चढ़ाना है तो नीचे थाल लगाएं, दूध चढ़ाएं उस दूध को पीले चरणामृत रूप में, परंतु ऐसा नहीं करते हैं, दूध चढ़ाते हैं वो बह जाता है नालियों में, तो भगवान को कैसा रस का स्वादन होता है, विभस्त रस का। तो यहाँ पर ये रूप गोस्वामी कह रहे चौथा रस है विभस्त रस का आस्वादन इस लीला से किया, और कहते हैं सखाओं को बीच बीच में ना, सखाओं का वात्सल्य तो है ही है, वीरता का रस भी दिखा रहे हैं, ऐसे करके बीच में छाती फुला देते हैं, देखा देख लो, साथ ही में मक्खन चुराते थे तुम पीछे रह गए, देखो मैं उठा रखा है ना, तो क्योंकि ऐसा क्यों कर सकते हैं, साख्य भाव है, तो साख्य रस और साथ ही में वीर रस दोनों का आस्वादन ग्वालबाल सखाओं को देख के करते हैं। देखो होता है ना कभी कभी कि प्रचार में जब निकलते कितनी पुस्तक करी प्रभु जी आपने, तो सामने वाला कहता है प्रभु जी मैंने तो आज 25 करी है, तो ये कहता है 25 बहुत अच्छा, मैंने 35 करी है। पूछा तो ऐसे जैसे कितना कृपालु है कितना प्रेमी है, लेकिन बताना ये चाह रहा था मैंने 35 करी है। तो ये कृष्ण भी वही कर रहे हैं, ग्वालबाल सखाओं को देख रहे हैं वात्सल्य भाव में, साथ साथ में किसका अनुभव कर रहे हैं, वीर रस का, साख्य रस, देखो सखाओं मैंने उठा रखा है, और बीच में इंद्र को भी तो दिखाना है, तो इंद्र देख रहा है उस बालक को कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, तो उनको लाल लाल आंखें करके दिखा रहे हैं, तो लाल लाल आंखें जब करते हैं तो रौद्र रस का अनुभव करते हैं, रौद्र रस, तो इस प्रकार से इंद्र घबरा रहा है कि ये लाल आंखें कर रहा है बच्चा, इतना क्रोध कर रहा है, अभी बताता हूं, और पानी डालो और संवर तक पूरी टंकी के सारे नल खोल दो, सारा खोल दो, पूरा हमारा जितना भी रिजर्वियर है पानी का सारा खोल दो, एक बूंद ऊपर नहीं रहनी चाहिए, हम भले ही 4 दिन नीचे से मांग कर लाएं लेकिन नीचे पूरा पानी डाल दो, बाहर तेज हवाएं चल रही हैं, बहुत तेज तेज हवा चलती हैं, बारिश की हवा जब होती है तो कैसी लगती है, मीठी, धीर समीर, बहुत अनुभव हो रहा है, धीर समीर चल रही है, तो इसमें सारी गोपियों को देख करके हाँ सब नाचने लग गए है ना, जोर जोर से कीर्तन करने लगे, गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, ओ गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, ओ राधा रमन हरि गोविंद बोलो, बोलो गोविंद बोलो हरि गोपाल बोलो, राधा रमन हरि गोविंद बोलो, अभी सोचो इतना कीर्तन हो रहा हो किसी को ले गए, दुखी लोग हैं, दुखालय मशाश्वतम के हैं, सब हमें तो सुख का अनुभव आनंद अनुभव इंद्र को लगा, बोले ये तो बड़े आनंद में, मैं तो पूरा टंकी खाली कर दिया, यहाँ सूखा पड़ गया है स्वर्ग लोक में, यहाँ पर आनंद हो रहा है। तो ये जो अनुभव हुआ बाहर से, जो धीर समीर आ रही थी वो जब छूती थी तो भगवान को करुण रस का आस्वादन होता था, और जब नाचते हुए देखते थे ग्वाल वालों को कि इनको कोई टेंशन नहीं, रक्षति ते कृष्ण न रक्षति ते कृष्ण, रक्षा करे तो भी कृष्ण प्राणनाथ है, न रक्षा हो मर जाए तो भी कृष्ण ही प्राणनाथ है। नाच रहे हैं तो साथ में दास रस का अनुभव कर रहे हैं कि देखो मुझ पर कितना अनुभव करते, मेरी सेवा करना अभी दायित्व बन गया है सेवा करना, तो दास रस का अनुभव हो रहा है, करुण रस और दास रस का अनुभव किया। और जब उन्होंने देखा कि इतना पानी भर गया है तो उन्होंने अपने जो शेष नाग थे उनको बोला, बलराम जी को आप बन जाइए जरा वाइपर का काम करिए। तो बलराम जी जो थे उन्होंने अपने को सांप के रूप में चारों तरफ बांध दिया, अभी इतना पानी है अंदर भी तो प्रवेश करेगा, जब पूरे में बाढ़ आ गई है बह रहा है सब कुछ, तो उन्होंने वाइपर की तरह कॉइल को अपने ऐसे घुमा दिया, अभी सारा कुछ अंदर कवर हो गया, अंदर एक भी बस हवा आएगी, अंदर कोई पानी की एक बूंद नहीं आएगी। तो इस समय जब उन्होंने देखा इतना पानी, भगवान ने देखा अच्छा इंद्र तुझे तो बाद में निपटूंगा, लेकिन इतना पानी देख करके कृष्ण के मन में आया ओ इतना जल, अद्भुत रस का आस्वादन किया, अद्भुत रस अद्भुत रात है ये तो, इतना जल बाहर है। साथ में बोले कि अभी गोपियों को उन्होंने देखा कि जो कि रास नृत्य में आनंद ले रही हैं, गोपियों को देखकर कि उन्हें मधुर रस का स्वादन हुआ, और गोपियों ने उनको क्या कहा, गिरिराज धरन हम तेरी शरण, गिरिराज धरन हम तेरी शरण, गिरिराज धरन हम तेरी शरण, गिरिराज धरन हम तेरी शरण। तो गिरिराज गिरी को धारण करने वाले, हे राजा हम तेरी शरण में हैं, और उनको कैसे मुकुट मणि मानकर के गोपियां देख रही हैं कि गिरिराज जी आपके ऊपर तो क्या है मुकुट लगा है ना। गोवर्धन गिरिधारी तेरे माथे तिलक विराज रयो, गोवर्धन गिरिधारी तेरे माथे तिलक विराज रयो, ओ गोवर्धन गिरिधारी तेरे मस्तक मुकुट विराज रयो, गोवर्धन गिरिधारी तेरे मस्तक मुकुट विराज रयो। तो तेरे ऊपर मुकुट लगा है, तो जब मुकुट आदि का वर्णन करें, कुंडल आदि का वर्णन किया, तो कृष्ण को श्रृंगार रस का स्वादन हुआ कि मेरा श्रृंगार हो गया है, तो मधुर रस से श्रृंगार रस। तो इस प्रकार से द्वादश रसों का आस्वादन भगवान कृष्ण करते हैं। इस लीला को भगवान कृष्ण ने सेवा लीला कहा, क्योंकि यहां सभी सेवा में लगे हैं। अभी जब सब डरे हुए हैं, सबको चिंता मग्न थे कि भाई बाहर जाएंगे तो इतना पानी होगा, भगवान कृष्ण एक ना एक दिन तो रोकेंगे इस लीला को, सेवा लीला चल रही है, यहां पे सब सेवा में लगे हैं। बलराम जी क्या सेवा करते हैं, बलराम जी उल्टी सेवा करते हैं, उल्टी सेवा मतलब यहां आनंद का अनुभव है श्रृंगार मधुर दास से साक्ष कोई रस का स्वादन करते, यहां उल्टा करते हैं। करुण होने की बजाय कि हे मेरे मेरे छोटे भाई तुमने गिरिराज धारण किया है, कृष्ण हंस रहे हैं देखो गिरिराज धारण कर लिया बहुत अच्छे, अब लोग कह रहे इतना टेंशन है यहां पर ये हंस रहे, तो क्यों हंस रहे हैं, ताकि सबकी एंजाइटी दुखों को थोड़ा कम कर दें। तो बलराम जी कालिया दमन लीला हुई थी तब भी सब घबरा गए थे, यशोदा माई बेहोश हो गई, कृष्ण किनारे खड़े होकर हंस रहे थे, कोई बात नहीं जाओ जाओ जाओ, कृष्ण मालूम है कृष्ण है, उनके प्रथम विस्तार स्वरूप बलराम है, तो बलराम हंसते हैं ऐसी लीलाओं में। तो दो लीला है जहां पर उन्होंने विपरीत रस का आस्वादन किया, होना चाहिए था अद्भुत या फिर होना चाहिए था विभस, लेकिन हुआ कौन सा रस का आस्वादन, करुण रस का नहीं हास्य रस का स्वादन, हंस रहे हैं तो यहां भी हंस रहे हैं, गिरिराज उठाया, लोग कह रहे हैं अच्छा आप हंस रहे हैं बलराम तो हम भी हंसते, तो सभी सब हंसने लग गए। तो यहां पर सेवा चल रही है कि सबको चिंता से रिलीज करो, चिंता में ना रहे कोई भी, ये बलराम जी की सेवा है। तो इसी प्रकार से हमारे मंदिर आदि में भी मृदंग कीर्तन, ये बलराम जी हैं, ये जो भूमि जहां हम बैठे हैं ये बलराम जी हैं, क्यों, ये चिंता से आपको मुक्त करने के लिए बलराम की सेवा है ना, चिंतन कराने के लिए है और चिंता मुक्त करने के लिए है। लेकिन हम चिंता से चिता हो जाते हैं लेकिन चिंतन नहीं करते, चिंता से चिता हो जाएंगे, चिता हो जाएंगे, जल रहा हूं यार आज बड़ी दिक्कत हो गई, ये हो गया वो हो गया, चिंता से चिता हो जाएंगे पर चिंता से चिंतन की ओर नहीं जाएंगे। लेकिन बलराम जी की सेवा है सबको कृष्ण चिंतन में
लगाना। ये कृष्ण की बलराम सेवा करते। यशोदा माई क्या सेवा करती हैं? यशोदा माई घबरा घबरा कर कृष्ण कह रही हैं, उठा लिया लाला तूने, कुछ तो खा ले, कुछ खा ले। तो साथ में खिलाती जा रही, कृष्ण भी मुस्कुराकर मक्खन भी खाते रह, कह रहे खिलाओ। अब ये बांसुरी बजा रहे हैं एक हाथ से ये ऐसे कर रखा है, श्रीनाथ जी का रूप जो है या हरिदेव जी का रूप, एक हाथ में बांसुरी एक हाथ में ऐसे गिरिराज उठाया, वहां खिला रही है, खा रहे हैं, घबराई हुई है तो वो भी सेवा कर रहे हैं खिलाने की। ग्वाल बाल डंडा लगा करके खड़े हैं तो वो भी सेवा कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से गोपियां नृत्य कर रही हैं और एक टक लगा के दर्शन कर रही हैं, क्योंकि प्रथम बार ऐसी लीला हो रही है पूरे अभी तक की लीला में जहां भगवान का उनको संग मिला है। तो बीच बीच में गोपियां कहती भी हैं, ओ ब्रह्मा तुझे सृष्टि रचना नहीं आया, ब्रह्मा को बोलती है, ब्रह्मा तुझे सृष्टि रचना नहीं आया। ब्रह्मा जी भी हैरान होते, मैंने क्या कर दिया, ये तो इंद्र की गलती है, मैं तो पहले गलती कर चुका हूं ब्रह्म विमोहन में, मेरी क्या गलती हो गई। बोले तेरी गलती ये है कि पलके जो है ना ये नीचे नीचे झपक जाते हैं, तुझे बनाना नहीं आया। क्योंकि पलके कैसी होनी चाहिए, कृष्ण तो एक टक लगा के देख रहे हैं पर हम जब दर्शन करते तो बीच बीच में चपक चपक बंद हो जाती हैं। जितनी देर के लिए बंद होती हैं, असीम वियोग का अनुकंपा है, असीम वियोग का अनुभव होता है। ऐसा लगता है कितने वर्ष बीत गए कृष्ण तुमसे दूर हुए एक झपकी के अंदर। और हम कैसे हैं, कथा में झपकी ले लेते हैं, हरिनाम में झपकी लेते हैं। वो गोपियां ऐसी थी सोते सोते नाम जप करती थी, हम कैसे हैं जप करते करते सोते हैं। सोचिए हम में और गोपियों में कितना भेद है, हमें ग्वालों में कितना, सखाओं में कितना भेद। हमें उस हमारे को लक्ष्य दिया प्रयोजन है कि हम सोते सोते जप करें, है ना। लेकिन अभी हम कैसे हैं, अभी हम संबंध से भी नीचे हैं, अभी हम जपते जपते सोते हैं, है ना। तो अभी हमें इससे वहां तक जाना है। तो इस प्रकार से सात रात सात दिन भगवान ने लीला करी, ना कुछ खाया ना कुछ पिया, थोड़ा बहुत मक्खन खिलाया, उससे कृष्ण का क्या होता है। अष्टयाम सेवा, आठ बार भोग लगता है कृष्ण को। तो कृष्ण ने सबसे कहा चलो लीला समाप्त हो गई, इंद्र का टंकी खाली हो गई है, इंद्र घबरा गया, सारा पानी चला गया, कुछ हुआ नहीं, यहाँ पे ड्रेन डांस हो रहा था। तो इंद्र ने जब टंकी बंद कर दी, संवर्तक को बुला लिया, बोले बाद में निपटेंगे, देख लगता है कोई अद्भुत बालक है, बाद में देखेंगे, आ जाओ। सब वापिस चले गए, बाहर से तो क्या था पानी अंदर आया नहीं, लेकिन बाहर तो जलमग्न था। कृष्ण ने सोचा अगर सब बाहर निकलेंगे तो घबरा जाएंगे, इतना पानी भय जाएंगे और अंदर पानी आएगा। सुदर्शन को भगवान ने कहा सुदर्शन आप गोवर्धन के ऊपर घूमिए और जितना भी जल है इसको सबको सुखा डालिए, ड्राई क्लीनिंग जो है कर दिया कृष्ण ने। सुदर्शन रूप में चक्र रूप में सारे जल के एक एक बूंद सुखा दी, बाहर निकले तो पेड़ पौधे हरियाली। कृष्ण बोले देखिए कितना सुंदर वातावरण हो गया, वर्षा इसीलिए आवश्यक है हम किसानों के लिए, कृषि गोरक्षा वाणिज्यम, गायों की रक्षा और कृषि यही हमारा वैश्यों का जीवन है। भगवान ने कहा चलो सब लोग बाहर निकलो, लीला समाप्त हो गई। सब बाहर निकले तो ग्वाल बाल कहते ओ लाला पहले तू निकल जा, इतने दिन से तू खड़ा, हम तो नीचे बीच में थक के सो भी गए, तू खड़ा ही है, तू पहले निकल। तो कृष्ण को तू कह के बोलते हैं, हम आप ओ गोविंदा ए कृष्णा ऐसे बोलते हैं क्योंकि हमारा संबंध नहीं है उनका, सखा भाव का संबंध, यही रसवादन करने कृष्ण आते हैं। उनको चाहिए भी नहीं कोई उन्हें भगवान माने, है ना। गोलोक में भगवान नहीं है, भगवान गोलोक में सखा है, माधुर्य है, प्रेमी है। तो प्रभुपाद भी बोलते हैं गीता में इन पांच में से कोई एक तो संबंध स्थापित करो, या तो शांत भाव, या तो दास्य भाव, या तो साख्य भाव, या तो वात्सल्य भाव, या तो फिर माधुर्य भाव, कोई तो एक होना चाहिए। इसके बिना जब संबंध नहीं है तो भक्ति फिर बड़ी औपचारिकता के रूप में भक्ति है, कोई तो। तो सब कहते निकलो निकलो कृष्ण आप थक गए हो, कृष्ण कहते मैं पक्का, सखा बोले हाँ हाँ हम खड़े ना डंडा लगा के। तो बोले ठीक है हमने अपनी अपनी लकुटी लगाई है, कृष्ण आप निकलिए। तो कृष्ण कहते ठीक है, नाखून को बस इसे थोड़ा टिल्ट किया था, टेढ़ा किया, जैसे ही टेढ़ा किया तो सारी डंडियां टूटने, चर टर टर चर सा ढूंढा सब टूट गए, पकड़ 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 उठा लाला उठा उठा उठा, उठा। तो कृष्ण कहा अभी अभी क्या प्लान है, पहले कौन, मैं कि तुम, हम ही जाएंगे कृष्ण, पहले हम सारे बाहर निकल गए, सब बाहर निकले। कृष्ण ने कहा अभी रख करके मैं आता हूं। देखिए कृष्ण ने जिस स्थान पर उठाया उसी हरिदेव स्थान से मानसी गंगा किनारे उसी स्थान पे वापस बिल्कुल सर्कमफ्रेंस जो है उसी के ऊपर धुरी पे आकर रखा वापस वहीं। ऐसे ही भगवान बोलते हैं ये भक्तों को सीखना चाहिए, किसी की सेवा के लिए कोई चीज ली, मंदिर की मृदंगा लिया, कीर्तन किया, वहीं छोड़ करके चले गए। उस व्यक्ति को जहां से उठाई है कृष्ण सीखना चाहिए वहीं वापस रखें सुव्यवस्थित रूप में कि दूसरी कीर्तन टीम ले जाएगी, माइक जहां से उठाया वहीं रखें। ये अगर कोई करता है, सही मायने में बहुत शिक्षा दी भगवान ने कि उसी स्थान पे लाकर कृष्ण ने उस गिरिराज को नीचे रखा। अब बाहर आए तो सब लोग कह रहे थे वाह जय हो गिरिराज धरण की, गिरिराज धरण की, गिरिराज धरण की। ऐसे जयकारे लग रहे थे, कृष्ण बोले तो गड़बड़ हो गई, हम तो भगवान बनना ही नहीं चाहते थे, ये तो भगवान बना दिए, गिरिराज धरण और ये सब नाम बोलेंगे, फोटो टंगेंगे, माला पहनाएंगे, हम तो रसवादन करने आए हैं वात्सल्य और साख्य रस का, ये तो गड़बड़ हो गई। तो सब बोले वाह कृष्णा वाह, देखो तुमने बताया नहीं, खाते तो हम सब साथ ही थे, चोरी हम सब साथ करते थे, कौन सी शक्ति तुम्हारे अंदर आई कि तुमने गिरिराज को 7 दिन 7 रात उठाया, इतना बड़ा पर्वत। लोग भगवान से बराबरी करते हैं कि हम भी गिरिराज उठा लेंगे या फिर हमने भी हम भी कर सकते हैं, कृष्ण ऐसा क्या कर दिया, उनको बोलो आप कुछ मत करो, 7 दिन 7 रात तक सिर्फ हाथ ऊपर करके रखो ऐसे। सातवें दिन खुद ही ऐसे थे ना, सातवें दिन क्या, पहले दिन के ही 3-4 घंटे बाद ही पैरालाइज होकर नीचे हाथ आ जाएगा ऐसा। क्या हुआ, बोले 3 घंटे प्रयास किया भगवान की कॉपी करने का, भगवान का अनुसरण करना चाहिए, अनुकरण नहीं, अनुकरण करने का प्रयास करेंगे, उनकी 16108 थी तो अपनी भी 3-4 तो होनी चाहिए, तो फंस जाएंगे हम संसार में। हमें भगवान के शास्त्र गीता भागवत का अनुसरण करना है, हमारे लिए जो दैनिक जीवन में है वो हम अपनाएं। भगवान ने बाहर रखा कृष्ण को, सभी ग्वाल बाल बोले वाह कृष्णा इतनी शक्ति कहां से लाए प्रभु। तो कृष्ण बोलते अब मैं क्या बोलूं क्या बोलूं, बोले कुछ नहीं, कृष्ण बड़ी सुंदर युक्ति दी, कृष्ण कहते मेरी कोई गलती नहीं, मेरी कोई शक्ति नहीं, मैंने कैसे उठाया, कछु ग्वाल बालन का संग, कुछ तो ग्वाल वाले आपका संग मिल गया इसलिए हो गया, समय ने कुछ नहीं, कछु ग्वाल बालन को संग, कछु माखन लियो चुराए, कुछ माखन चुराते थे ना, वो जो चोरी कर करके खाया वही आज शक्ति निकल के आई है, दिन में 8-8 बार चोरी करते थे तो 7 दिन उठाए कौन सी बड़ी बात है। कछु ग्वाल बालन को संग, कछु माखन लियो चुराए, और अब सारा का सारा डाल दिया, बोले ये श्रीमती राधा जी की कृपा से मैंने गिरवर लियो उठाए, इनको पकड़ो, ये है वृंदावनेश्वर, ये भगवान है, हम भगवान नहीं, हम तो सखा है, तुरंत अपना पल्ला झाड़ दिए, शिक्षा दे रहे हैं कि जब आपको लोग सम्मान दे, वाह वाह क्या कथा करिए, वाह वाह क्या लेक्चर दिया, वाह वाह क्या कीर्तन किया, तो बोले हम कुछ नहीं, हमारे गुरुदेव है श्रील प्रभुपाद जी, यही शिक्षा देते हैं हमें, अपने गुरुजनों को हाथ जोड़ करके बोलना चाहिए, उनकी कृपा से हम जो है कुछ कर पा रहे हैं। भगवान भी अपना जब सम्मान लेना नहीं चाहते हैं, हम लोग कैसे सम्मान के लिए भिक्षुक हो जाते हैं या अभिलाषित हो जाते हैं, तो ये चीज यहाँ पर सीखनी है। इसीलिए एक सुंदर श्लोक में कहा गया कि ये लीला बड़ी ही सुंदर है, साथ में एक श्लोक बोलिए, कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदना नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। तो इसमें भागवत में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं सूक्ष्म रूप में बड़ा ही धन्यवाद दे रहे हैं, ओहो कृष्ण आप तो वसुदेव जी के घर में प्रकट हुए, ओ वसुदेव जी आप बड़े भाग्यशाली हैं जिनके कृष्ण अंश रूप में विष्णु रूप में आपके जेल में प्रकट हुए। विष्णु आए थे वसुदेव जी के पास, नंद के पास कृष्ण आए, परंतु इसमें कृष्ण वासुदेव आए कहा गया। कई बार नंद को वसुदेव और यशोदा को भी देवकी कहा गया उनके अनेकों नामों में से, तुम ऐसा मान सकते हैं कि नंद बहुत भाग्यशाली है या फिर वसुदेव जी भी भाग्यशाली है कि अंश मात्र में विष्णु तो आए उनके यहाँ। तो इस प्रकार से कृष्ण के घर वसुदेव जी के घर कृष्ण आए, कृष्णाय वासुदेव आए, उनसे भाग्यशाली कौन, देवकी नंदनायचा, देवकी ज्यादा उनसे भाग्यशाली, देवकी मतलब यशोदा, जिनके यशोदा के गर्भ में भगवान श्री कृष्ण आए, देवकी नंदनायचा, नंद और देवकी ज्यादा भाग्यशाली, और उनसे भी भाग्यशाली कौन है, नंद गोप कुमाराया, नंद गोप कुमाराया मतलब नंद गोप के घर में पालने में सखा गण उनको खिला रहे हैं, उनको अपना झूठा खिला रहे हैं, कंधे पे बिठा रहे हैं, पलने में झुला रहे हैं, ये उनसे भी अधिक भाग्यशाली हैं, और उनसे भी अधिक भाग्यशाली हैं गोविंदाय नमो नमः गोपियां, उनसे भी अधिक भाग्यशाली हैं जिनके साथ भगवान श्री कृष्ण रास यात्रा करते हैं, लीला करते हैं, माधुर रस का स्वादन करते हैं। तो एक जगह वात्सल्य दास्य और अभी यहां पर किसका स्वादन हो रहा है, माधुर्य। तो माधुर्य परकाष्ठा है रस की, सबसे प्रेमी भाव है माधुर रस। तो माधुर रस गोपियों के साथ किया, तो इस श्लोक में ऐसा कहा गया कि वो 70 करोड़ गोपियां जिनके साथ भगवान ने रास किया वो ज्यादा अधिक भाग्यशाली हैं जिन्होंने जन्म दिया, क्योंकि जन्म तो वात्सल्य भाव में दिया लेकिन यहां माधुर्य। और गोलोक में कौन सा है, गोलोक के बीच में जो पुष्प है उसके कर्णिका में माधुर रस की ही प्रधानता है। माधुर रस जब तक नहीं आएगा तब तक गोलोक के इस बीच वाले स्थान पर नहीं जा सकता। जितने भी हमारी मंजरियां हैं गोस्वामी, छठ गोस्वामी, रूप सनातन, रास मंजरी, रति मंजरी है ना, लवण मंजरी, जितनी मंजरियां हैं ये राधा कृष्ण के निकट स्थान पे अष्ट पत्तों के ऊपर कमल दल पे रहती हैं। और जो गोपियां हैं ललिता, विशाखा, तुंग विद्या, सुदेवी, ये सब अगले आठ पत्तों पे रहती हैं। और फिर उनके नीचे वाले पत्तों में वात्सल्य भाव प्रकट होता है। ये जो ऊपर के मुख्य पत्ते हैं इनमें तो माधुर्य ही प्रधान है, तो जब तक माधुर्य नहीं हो वहां तक जा नहीं सकते। तो माधुर्य रस कैसे प्राप्त होगा? श्रील प्रभुपाद कहते हैं रागनुगा भक्ति पाने के लिए विधि से प्रारंभ करो, विधि को इतनी प्रगाढ़ता से पालन करो कि विधि करते 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 दैट बिकम्स स्पॉन्टेनियस। मंगल आरती आता है आते आते जप करते 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 ऐसा हो जाए कि जप माला ना भी हो तब भी मुंह से क्या निकले, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम
राम राम हरे हरे।
तो इस प्रकार से बहुत ही अद्भुत लीला भगवान से कृष्ण ने करी। भगवान ने गिरिराज को नीचे रखा। आचार्य विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं इसमें इंद्र पूजा को बंद कराना एक कारण था, साथ में व्रज के कण जो थे उसमें देवी देवताओं को विराजमान करना इस लीला में कारण था। सात दिनों का उत्सव आज तक कोई नहीं हुआ था, 7 डे सेशन भागवत सप्ताह नहीं हुआ था, तो यहाँ सप्ताह हो रहा है। भगवान कृष्ण का दर्शन 7 दिन तक हुआ, ये पहली बार हुआ। दूसरा, श्रीमती राधा रानी को एक विशेष रस का आस्वादन कराना था। जैसे होता है ना, एक प्रेमिका प्रेमी से क्या चाहती है, मेरा प्रेमी कैसा हो, थोड़ा शक्तिशाली हो, है ना, कोई ऐसा सा पहुंच जाए तो है ना, कोई स्त्री विवाह करेगी, बोले नहीं इससे नहीं गई तो मुझसे भी ढीला है। तो कृष्ण कोमल है, मृदु है, लेकिन फिर भी क्या चाहते हैं, कहा ये माधुर्य के रसेर उल्लास, रस को प्रधान विग्रह को उच्च करने के लिए, रस के उल्लास को बढ़ाने के लिए कृष्ण ने कहा चलो एक लीला ऐसी करता हूं। वैसे तो बहुत ही असुरों का वध किया, लेकिन तब भी राधा रानी अधिक वो क्या बोलती थी, अरे कृष्ण ये तो ना पहले से ही ना असुर को तुमने मार दिया, इससे मार दिया, उससे मार दिया, ऐसे बोलती थी। लेकिन इस लीला में कुछ भी बोल नहीं सकता कोई, क्योंकि इसमें कोई असुर नहीं है। इसमें असुर तो इंद्र है, लेकिन सही मायने में इसमें भगवान गिरिराज को धारण करके 7 दिन 7 रात तक इतनी लीला कर दिए कि सबको देखना ही पड़ा, बाहर निकल नहीं सकते थे। तो वीर रस का आस्वादन करा, और वीर रस के आस्वादन से क्या होता है, वीरता है शक्ति, और वीर रस से श्रृंगार रस की ओर भगवान लेके जा रहे। श्रृंगार रस क्या है, क्या है श्रृंगार रस में, श्रृंगार रस में है आकर्षण। तो भगवान ने वीर रस दिखाया और उस वीर रस से राधा रानी के हृदय में श्रृंगार रस का स्वादन हुआ, जिससे उनका आकर्षण कृष्ण के प्रति और बढ़ गया। और इसी के बाद में फिर रास यात्रा होती है, रास लीला होती है। रास करने के लिए पहले तैयार तो करना पड़ेगा गोपियों को, भाव को, हर एक व्यक्ति तो घुस नहीं सकता रास यात्रा के अंदर। शिव जी घुस गए थे एक बार, बोले हम भी घुसना चाहते हैं। तो जब घूम करके आए तो बोले गोपियों से, हमें भी जाना है रस में। बोले नहीं प्रभु, ये रहस्य बहुत ऊंची चीज है, माधुर्य रस। बोले हम भी भजन करते हैं, नाम जप करते हैं, हम भी व्रत रखते हैं, भस्म लगाते हैं। बोले नहीं नहीं, ये सब तपस्या नहीं चाहिए, बहुत अधिक प्रेम चाहिए। नहीं नहीं हम जाएंगे। मान जाइए प्रभु, गोपियां कहती हैं अरे अंदर तो बहुत बड़ी लीला चलने वाली है आज शरद पूर्णिमा में, आप मत जाइए। शिव जी बोले नहीं जाएंगे, जिद कर रहे हैं। अरे लक्ष्मी जी जो पत्नी है भगवान की, वो बेलवन में बैठ के तपस्या कर रही है, उनको प्रवेश नहीं मिला, आपको कैसे मिलेगा। अरे हम जाएंगे, हम हमेशा जब राम बन के आते हैं दर्शन करते हैं, जब कृष्ण बन के आते हैं तो हम यशोदा के घर दर्शन करते हैं, महावन में जाके हम दर्शन करेंगे। और गोपियां बोली मानेंगे नहीं, चलो तैयार व्यार कर दिया, गोपी ड्रेस पहना दिया। बोले जाइए, ऊपर से तो ड्रेस पहना दिया, अंदर से क्या करेंगे, हृदय की भावना। तो भगवान ने अपने को 70 करोड़ गोपियों के साथ में 70 करोड़ रूप में प्रकट किया अपने को, और डांस करते थे, जिस गोपी का जैसा भाव होता था उसके साथ वैसा रसवादन कर रहे थे। और करते रहे करते रहे करते रहे करते करते बीच में हाथ पकड़ा ना, ये हाथ तो गोपी का नहीं है, इतना मोटा हाथ है, शक्तिशाली है, संहार करता जैसा हाथ है कि संहार कर रहा हो लड़ाई झगड़े वाला। बोले कौन है, घूंघट हटाया तो देखा इतनी बड़ी जटा जूट कर, शिव आप यहाँ कैसे प्रवेश कर। बोले प्रभु गलती हो गई, लेकिन गोपियों से पूछ कर क्या, ना 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 ना, ये आपका स्थान नहीं, अभी ये बहुत लंबी लीला चलेगी, अभी तो प्रारंभ हुआ है। कितने दिन शरद रास यात्रा चली, ब्रह्मा जी के एक दिन, ब्रह्मा जी के एक दिन समझते हैं कितना दिन होते हैं, ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु प्रकट होते हैं और 14 मनु में एक मनु 71 चतुर्युग में जाता है और एक चतुर्युगी 43,20,000 सालों की होती है। 43,20,000 इंटू 71 इंटू 14 इज 12 आवर्स ऑफ ब्रह्मा जी इंटू 2 इज 1 डे ऑफ ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी की एक रात्रि तक रासलीला चली है और यहां पर क्या हुआ किसी को पता ही नहीं है। क्यों? चंद्रमा को स्थापित कर दिया, बोले स्थिर हो जाओ, सूर्य को स्थिर कर दिया, सब कुछ स्थिर है, सिर्फ चलायमान क्या है, गोपियां और कृष्ण, गोपियां और कृष्ण। शिव को बाहर निकालने, बोले चलो बाहर। तो कृष्ण बोले पहले तपस्या करो, माधुर्य प्रेम जागृत करो, उसके बाद आना भी आप कैलाश के लिए ठीक हो। जब बाहर निकाल दिए तो शिव जी बोले अब तपस्या करनी पड़ेगी। तब से वृंदावन में बैठे हैं, रोज गोपी का ड्रेस पहनते हैं, रोज बोलते रहते हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो इस प्रकार से एक कारण यह भी है कि वीरता से श्रृंगार की ओर। तो विश्व चक्रवर्ती ठाकुर ने 5 कारण बताए। पहला कारण बताया इंद्र की पूजा करने बंद करके कि देवी देवताओं की पूजा नहीं करनी होती है। इकला प्रभु कृष्ण आर सब भृत्य यार इच्छे नाचे ते ताते कर नृत्य। एक ही इकला प्रभु कृष्ण है, बाकी सब उनके दास हैं। ये बात स्थापित करने के लिए भगवान ने एक कारण लीला करी। दूसरी कि व्रज के सभी ग्वाल बालों को एक साथ 7 दिन तक रस आस्वादन करने का मौका मिले और व्रज जो है उसका किसी से कोई कंपेरिजन नहीं है। स्वर्ग में इंद्र जो है ना अपनी अमरावती में रहकर धन अंध हो गया है, धन के कारण अंधा हो गया है, लेकिन हे धन अंध द्रुमद इंद्र तुम इस व्रज मंडल की बराबरी नहीं कर सकते हो। एक ये कारण था। चौथा कारण था राधा रानी के मन में आकर्षण उत्पन्न करना, वीरता दिखाकर तो वीर रस से श्रृंगार रस की ओर ले जाना। और पांचवा कारण था कि जब भगवान राम आए थे तो अयोध्या में, जब अभी दीपावली गुजरी है, जब भगवान राम आए तो अगस्त ऋषि से मिलने के लिए सीता माता के साथ गए। बोली अगस्त ऋषि हैं, तो अगस्त ऋषि को उन्होंने खूब सारा प्रसाद खिलाया, खिलाते रहे, लेकिन जंगल था, कंद मूल फल आदि खिलाया। अगस्त ऋषि ने भर पेट खाया, बोले थोड़ा जल भी तो चाहिए, इतना पेट आपने खाना खिलाया, सब कुछ खिलाया, युद्ध जीत कर आए थे तो खूब बड़ा भंडारा हुआ, लक्ष्मण जी ने पकाया, सीता मैया ने पकाया, वानरों ने पकाया, खूब बड़ा भंडारा हो रहा है और अगस्त जी खा रहे। अगस्त जी ने जब खा लिया बोले थोड़ा जल। अब भगवान बोले यहां कहां जल पिलाएंगे अगले में। तो अगस्त जी जो थे ना उनको जल पिलाना था। तो ये सारा जल कहते हैं, एक आचार्य ने कहा विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने कि सुदर्शन ने जल नहीं पिया, जितना जल बाहर था अगस्त ऋषि को भगवान ने आह्वान किया। बोले राम जब अब उनके आए त्रेता युग में तब भर पेट खिलाया था, अब पानी रह गया था, अब पानी पियो। तो बाहर अगस्त जी आए, अगस्त जी ने मुंह खोल के बैठ गए और जितना भी जल इंद्र ने भेजा था वो सारा अगस्त ऋषि उसका पी गए। तो इस प्रकार से भी एक लीला होती है। तो ये 5 कारण बताए लीला के विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर ने। भक्ति रसामृत सिंधु में रस स्वादन रूप गोस्वामी ने वर्णन किया, भक्ति रत्नाकर में आचार्यों ने वर्णन किया और श्रीमद भागवत में सुखदेव गोस्वामी ने वर्णन किया और श्रील प्रभुपाद ने कृष्णा बुक में गोवर्धन का वर्णन किया। तो हमने अधिक सभी वर्णनों पर थोड़ी चर्चा की। वैसे तो बहुत विशेष लीला है, इसकी चर्चा मतलब कितने दिन बीत जाए, अभी तो शुरुआत हुई है। और हर साल गोरखराज पे हम कुछ ना कुछ कथा करते हैं, तो हर राज कुछ ना कुछ एडिशनल नया बहुत कुछ है गिरिराज के बारे में जानने के लिए। कितने कुंड है, गिरिराज जी को हरे दास वर्यम के रूप में भी देखा जाता है, दासों में सबसे श्रेष्ठ, कुछ भगवान मान रहे हैं और कुछ दास मान रहे हैं। दास कैसे हो गए, बोले जब भगवान ने गिरिराज को धारण किया तो जितनी भी मूसलाधार वर्षा हुई, जितनी भी वृष्टि हुई, जितनी पानी गिरा, जितनी बिजली गिरी, किस पे गिरी, गोवर्धन पे। आपको बोला जाए प्रभु मैं लेक्चर दे रहा हूं, आप मेरे ऊपर ना यहाँ टेंट के ऊपर लेट जाओ और ना मुंह खोल के पानी आप पीते रहो, बारिश मत होने देना और अपने ऊपर आप बिजली लेते रहो, ऐसा करेगा कोई भक्त, उतर के भाग जाएगा। दासों में सबसे श्रेष्ठ बताए गए, छाते के समान बन गए गिरिराज, है ना। और क्या देते हैं, ग्वालवाल सखाओं को खेलने के लिए पेड़ के फल देते हैं, रुकने के लिए कंदराएं और गुफाएं देते हैं, ऋषि मुनों को तपस्या करने का स्थान देते हैं, मुनियों का स्थान बोला जाता है, मुनि स्थान है वृंदावन गोवर्धन धाम, मुनियों का स्थान है। रघुनाथ दास गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी कहां रहते हैं, गिरिराज गोवर्धन की तलहटी में। क्यों, ये मुनि स्थान है, भजन करने का स्थान। यहां पर कितनी लीला स्थली है, चंद्र सरोवर, गोविंद कुंड, एरावत कुंड, सुरभि कुंड, ये कुंड कैसे आ गए, सभी सुरभि कुंड वो कहते हैं, भगवान को जब इंद्र ने आकर अभिषेक किया सुरभि गाय ने किया तो सुरभि कुंड बन गया, इंद्र ने आकर अभिषेक किया तो इंद्र कुंड बन गया, हाथी ने सोचा हम भी धो लें तो हाथी ने भी लगे हाथ, उसने भी अपने सूंड में जल भर के डाल दिया तो ऐरावत कुंड हो गया। तो इस प्रकार से ये सुरभि कुंड, ऐरावत कुंड, इंद्र कुंड बन गए, इंद्र भंग लीला बन गए, इंद्र मान भंग लीला स्थली, और गोविंद कुंड बन गया जहां पर सभी देवी देवताओं ने, सभी ने भगवान को आचमन किया और उस खूब अभिषेक करवाया भगवान का। तो इस प्रकार से कई कुंड है, ये आता है 5000 वर्ष पुरानी लीलाओं में। परंतु आचार्य 500 वर्ष पूर्व आके कहते हैं कि देखो इसमें एक गुहितम कारण है, ये जो गिरिराज है भगवान का वियोग सह नहीं सकते एक पल के लिए भी। तो जब भगवान कृष्ण 5000 वर्ष पूर्व चले गए तो गिरिराज तो भी 4500 वर्ष तक तो ऐसे खड़े रहे जब तक गौरनिता ही नहीं आए, नित्यानंद गौरंगा महाप्रभु, गौरंगा महाप्रभु नहीं आए, 1515 ईस्वी में आए गौरंग महाप्रभु, तब तक तो खड़े रहे गिरिराज। तो गिरिराज खड़े 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 रोने लग गए, रोने लग गए, रोते रोते उनके आंखों से, जब हम रोते हैं तो कौन सा जल निकलता है, नमकीन के मीठा नमकीन, और जब खुश होते हैं तब आंसू निकलते हैं तब कौन सा निकलता है, मीठा, ठंडा और गर्म। जब दुखी होते हैं जब आंसू निकलते हैं तो वो गर्म है, जब दुखी होकर के निकलते हैं तो गर्म है, और सुखी होकर प्रसन्न होकर आंसू निकलते हैं तो वो ठंडे होते हैं। ठंडा गर्म नमकीन मीठा, ये विभिन्न भगवान ने फाउंटेन लगाया यहाँ पर अलग प्रकार का। तो ये जो जल निकला विरह में, दुख में निकला, उससे सारे कुंड भर गए, इसीलिए उनका जल नमकीन है। आप कभी आचमन करें नमकीन जल, तो लोग कहते हैं विरह भावना में इतना रुदन किया गिरिराज ने, हे प्रभु कहाँ चले गए, पाषाण कुटीबो माथा, मैं तो अपना माथा, मैं तो खुद ही पाषाण कहाँ फोड़ू अपना शरीर। तो रो रहे हैं, कह रहे हैं कहाँ चले गए, रोते रोते सारे कुंडों के अंदर जल भर गया, ऐसा भी आचार्य ने वर्णन किया। तो कई प्रकार की दृष्टि से आप यहां चर्चा कर सकते हैं, एक एक लीला स्थली पर दर्शन करने जाए ना, ये जन्म बीत जाएगा, लीला स्थलियां समाप्त नहीं होंगी, इतनी लीला स्थलियां हैं, राघव पंडित गुफा, कुसुम सरोवर, राधा कुंड, श्याम कुंड, उद्धव कुंड, चंद्र सरोवर, कितनी लीला स्थलियां हैं, कितने कुंड हैं, गुलाल कुंड, और महा कामा वन तक फैला हुआ है, इधर बहुला वन तक फैला हुआ है, पूरा ये गोवर्धन ही तलहटी कहलाती है ना, बहुत कुछ है, चकलेश्वर महादेव, मानसी गंगा, सनातन गोस्वामी भजन कुटीर, कितना कुछ जानने और देखने योग्य गोवर्धन में। और लोग सोचते चक्कर काट के आएंगे, परिक्रमा हो गई, बस यही फल मिल गया। तो जब गिरिराज परिक्रमा में जाएं तो विशेष करके ध्यान रखें, किसी की भी परिक्रमा करने का फल होता है कि ये वस्तु मेरे जीवन की केंद्र बन जाए। जैसे गणेश जी ने अपने माता पिता की क्यों करी, ये माता पिता मेरे जीवन के केंद्र बने, ऐसे जब हम परिक्रमा करें ये गिरिराज मेरे हृदय का केंद्र बन जाए, विषय वस्तु बन जाए, मैं इनका आश्रय बन जाऊं, ये भावना लेके परिक्रमा लगानी चाहिए। लेकिन लोग लगाते नहीं है, लोग कैसे परिक्रमा लगाते हैं, गप्पे मार के, पैंट पहन के, शर्ट पहन के, है ना, उनको भी फल मिलेगा क्योंकि गोवर्धन में जाने से फल मिलता है, लेकिन उतना नहीं मिलेगा जितना भक्तों को मिलेगा। और हमें परिक्रमा समाप्त करने का भाव नहीं है मुख्य, कि 7 किलोमीटर 21 किलोमीटर कर दिए मैंने एक ही दिन में, 5 घंटे में, 4 घंटे में, कोई कंपटीशन है, कोई रेसिंग, हमें गोल्ड मेडल मिलना है, यहां पर आस्वादन करने के लिए, रमणीय स्थान को रमण करना चाहिए, आनंद का अनुभव करना चाहिए, पग पग पर आनंद का अनुभव करो। इस लीला स्थली में क्या हुआ था, यहां दंडवत करेंगे, वहां बैठेंगे, थोड़ा भजन करेंगे, थोड़ा आचमन करेंगे, थोड़ा ऐसे करके, भले ही 4 साल में परिक्रमा हो कोई दिक्कत नहीं है, दंडवती परिक्रमा करते हैं भक्त वहां पर, कुछ भक्त वहां पर दिन में 3 बार परिक्रमा करते हैं, रोज 3 परिक्रमा, दंडवती परिक्रमा करते हैं जो लोग, वो दंडवत करते खड़े होते हैं, दंडवत करते खड़े होते हैं, ये 10-10 दिन में खत्म होती है। कुछ भक्त करते हैं 108 अष्टोतरस दंडवत परिक्रमा, 108 पत्थर रखेंगे, खड़े होंगे, 1 2 1 2 ऐसे करके 108 बार दंडवत, फिर 1 आगे, फिर 108 बार दंडवत, फिर 1008 दंडवत, फिर आगे। और एक भक्त मिले थे, मैंने उनसे पूछा था कि आप कितने वर्ष से गोवर्धन परिक्रमा कर रहे हैं, कह रहे अरे महाराज जी, प्रभु जी 27 साल तो हो गए। मैंने कहां से शुरू की थी, बोले दान घाटी से, कहां पहुंचे, गोविंद कुंड, दान घाटी से गोविंद, 1.5 किलोमीटर कवर हुआ है, 27 वर्ष बीत गए, 1000 दंडवत कर रहे हैं, आचमन कर रहे हैं, और है ना लीला स्थली शास्त्र पढ़ रहे हैं, भागवत पढ़ रहे हैं, हर कदम पर वो कर रहे हैं, रामायण रखी, भागवत रखी, पूरी ट्रॉली बना रखी, सब रखा हुआ उसमें बुक सेट, और निकालते हैं पढ़ते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। अलग अलग प्रकार से लोग गोवर्धन को अनुभव करना चाह रहे हैं, रमणीय स्थान, ये नहीं चक्कर काटा, और बोले जी चक्कर काट लिया। रात्रि में परिक्रमा नहीं लगानी चाहिए, परिक्रमा पुस्तकों के अंदर है। रात को 9 बजे से सुबह 3 बजे तक गिरिराज जी शयन करते हैं, सो जाते हैं। मंगल आरती में 3 बजे उठते हैं और रात को 9 बजे सोते हैं। तो 9 से 3 परिक्रमा लगाने से क्या होता है? अपराध होता है, सेवा अपराध। क्यों? जैसे ड्यूटीज को अगर 9 बजे के बाद बंद हो जाए तो आप दंडवत नहीं करते, क्योंकि अगर आप करेंगे तो भगवान भी रिस्पॉन्ड करेंगे। भगवान उठेंगे, अरे मेरा भक्त आया है, भगवान उठेंगे। लेकिन राधा रानी को अच्छा नहीं लगता है, बलदेव जी को अच्छा नहीं लगता है कि जगन्नाथ तुम्हारे भक्त भी कैसे तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ते रात में भी, तो मैं इनको दंडित करूंगा। तो कृष्ण मना करते, नहीं नहीं दंड मत दो, लेकिन फिर भी बलराम जी राधा रानी सब मिलकर के दंड करते हैं उसको जो भगवान को डिस्टर्ब करता है। जब भगवान का भोग लगे दोपहर में 1 से 4 अल्टर बंद, कोई प्रणाम नहीं, कोई परिक्रमा नहीं। रात के समय 9 बजे के बाद कोई प्रणाम नहीं, वैष्णव सदाचार पुस्तक में भी लिखा है। ऐसे ही गिरिराज को 9 बजे के बाद नहीं करना चाहिए, उनको भी 9 का 9:30 हो गया ठीक है, एक्सटेंडेड वर्जन चलता है। लेकिन ऐसा नहीं कि रात में ही प्रारंभ करें 10 बजे जाकर के, वहीं सुबह दिल्ली आना है वापस। तो ये परिक्रमा गोवर्धन की बहुत ही रमणीक है, बहुत आनंददायक है। हम इसके हर पग पर बैठ के कथा श्रवण करें, क्योंकि व्रज में जाने का मतलब है व्रज कथाओं का श्रवण करना। लीला कथा श्रवण शक्ति, लीला स्थली शक्ति और लीला कथा श्रवण शक्ति, ये दोनों शक्ति प्रवेश करेंगी और पूरा हृदय निर्मल कर देंगे। वहां जाएं, कथा सुने, बैठें, आनंद करें, जल्दीबाजी ना करें, जल्दी 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 जल्दी। और ठीक है, ऐसा रख सकते हैं कि हम 1 हफ्ता गए या 3 दिन के लिए गए, 2 दिन लीला स्थली, 1 दिन परिक्रमा लगा लिया, ऐसे भी कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं कि बस परिक्रमा ही मेरा गोल चक्कर काटना ही मेरा मोटिव है, इससे कुछ नहीं मिलना है। थोड़ा पुण्य मिलेगा, लेकिन शिने पुण्य मृत्यु लोकम विशन्ति। तो इसलिए हम जाएं इस व्रज में, जिस व्रज में भगवान श्री कृष्ण चोर जो हैं उन्होंने क्या कर दिया है, ग्वाल बालों के लिए प्रेम के लिए गिरिराज को धारण किया है। व्रजे प्रसिद्धम नवनीत चोरम गोपांगनानां च दुकूल चोरम अनेक जन्मर्जित पाप चोरम चोराग्रगण्यम पुरुषम नमामि। अनेक जन्म अर्जित पाप चोरम, अनेक जन्मों के अर्जित पाप को ले लेंगे। हरिष्यामि अहम सर्वम, इसीलिए भगवान का नाम है हरि। क्या है? हरि, है ना, हरि भगवान का नाम। तो कई बार बोलते हैं हरि बोल, तो सभी बोलते हैं हरि बोल। अरे भाई हमने आपको बोला हरि बोल, आपको बोलना चाहिए हरि, है ना। हरि बोल तो आप ही बोलते हैं हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, ये ठीक है अभी, हरि बोल तो बोल बोल हरि बोल, अरे हम तो बोल ही रहे है ना। तो इस प्रकार से बहुत आनंददायी लीला है। तो आप सबको आस्वादन कराने, मैंने कोई त्रुटि की हो तो क्षमा करिएगा, अयोग्य हूँ, आता नहीं कुछ बोलना व्याख्यान करना, पर जो भी है सेवा दी जाती है तो मैं आता हूँ बोलता हूँ। तुम्हारे भक्त लोग मुझे क्षमा करेंगे, कुछ गलती हो तो आप सब मुझे बताइएगा जो मेरी गलती हो। हरे कृष्णा। शिष्य जगन्नाथ बलदेव।